आगे सबक देखिए भाई। फसलुन व इदा तजव्वजन नसरानी यूनसरानी यतन अला मैततिन औ अला गैरी महरिन व दालिक फी दीनिहिम जाइज़ुन व दखल बिहा औ तल्लकहा क़ब्ल दुखूली बिहा औ मात अनहा फलैस लहा महरुन व कदालिक अल हर्बियान फी दारिल हर्ब व हादा इंद अबी हनीफा रहिमहुल्लाह। गुज़श्ता सबक में हम मसला पढ़ रहे थे कि अगर मियां बीवी के अंदर महर के सिलसिले में इख्तिलाफ आ जाए, तो अगर इख्तिलाफ मिकदार में हो और जिंदगी के अंदर हो तो तरफैन फरमाते हैं कि महरे मिसल को हकम बनाया जाएगा, और जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला फरमाते हैं कि खावंद का कौल मुअतबर है भाई। और अगर इख्तिलाफ जो है वो असल मुसम्मा के अंदर हुआ तो फिर हमारे तीनों अइमा के नजदीक महरे मिसल वाजिब होगा। असल मुसम्मा में इख्तिलाफ आया, यानी इन दोनों में से एक कहता है कि सिरे से कोई मुसम्मा मुकर्रर ही नहीं किया था, और एक कहता है कि मुसम्मा मुकर्रर किया था, महर मुकर्रर किया था, फिर चाहे उसकी मिकदार जिक्र करे या न करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मसले की सूरत एक ही तरह रहेगी। तो जब भी असले मुसम्मा के अंदर इख्तिलाफ हो और जिंदगी के अंदर हो तो फिर महरे मिसल वाजिब होगा, और अगर दोनों में से किसी एक का इंतकाल हो जाए और उसके वारिस आकर इख्तिलाफ कर रहे हैं दूसरे के साथ तो इस सूरत में भी मसला उसी तरह होगा जैसे कि मियां बीवी की जिंदगी के अंदर था, यानी तरफैन के नजदीक महरे मिसल को हकम बनाया जाएगा और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक खावन जो है उसका कौल मुअतबर होगा, या अगर उसके वारिस हैं तो उनका कौल मुअतबर होगा। और अगर मियां और बीवी दोनों का इंतकाल हो गया है और उसके बाद इख्तिलाफ आया, तो अगर इख्तिलाफ मिकदार के अंदर हुआ तो फिर इमाम साहब फरमाते हैं खावंद के वारिसों का कौल मुअतबर है। याद रखो, इमाम साहब फरमाते हैं कि जब दोनों का इंतकाल हो जाए तो फिर महरे मिसल का कोई एतबार नहीं, लिहाजा अगर दोनों जिंदा हैं या दोनों में से एक जिंदा है तो महरे मिसल को हकम बनाएंगे, लेकिन अगर दोनों का इंतकाल हो चुका है और मिकदार के अंदर इख्तिलाफ आया है तो फिर इस सूरत में महरे मिसल को हकम नहीं बनाएंगे बल्कि खावंद के वारिसों का कौल मुअतबर होगा। और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह तो फरमाते थे हर हाल में खावंद या खावंद के वारिसों का कौल मुअतबर होगा, तो वो यहां पर भी यही फरमाते हैं। तो इमाम साहब के नजदीक भी खावंद के वारिसों का कौल मुअतबर और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक भी खावंद के वारिसों का कौल मुअतबर, लेकिन फिर दोनों के अंदर फर्क यह है कि इमाम साहब कलील का भी इस्तिस्ना नहीं फरमाते, जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह कलील का इस्तिस्ना फरमाते हैं कि अगर खावंद के वारिसों ने कलील महर बयान किया कि आम तौर पर इस जैसी औरत इतने महर में निकाह पर राजी नहीं होती तो फिर इस सूरत में इस खावंद के वारिसों का कौल मुअतबर नहीं है। और जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह यहां पर भी फरमाते हैं कि जैसे मसला जिंदगी के अंदर था कि वहां महरे मिसल को हकम बनाया जाता था, तो यहां भी महरे मिसल ही को हकम बनाया जाएगा। और अगर यह इख्तिलाफ असले मुसम्मा में हुआ तो फिर इमाम साहब के नजदीक उसका कौल मुअतबर जो इनकार कर रहे हैं, यानी मुनकिर का कौल मुअतबर है, यानी जैसे खावंद के वारिस जो हैं वो महरे मुसम्मा का इनकार कर रहे हैं तो उनका कौल मुअतबर होगा। और नीस इस सूरत में बीवी के वारिसों को कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि यहां दोनों का इंतकाल हो चुका है और महरे मिसल को भी फैसल नहीं बनाया जा सकता, जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि इस सूरत में महरे मिसल को फैसल बनाया जाएगा और साहिबैन के कौल पर फतवा है। उसके बाद फिर दूसरी सूरत जिक्र की थी साहिबे हिदाया ने कि अगर मियां बीवी दोनों का इंतकाल हो जाए तो फिर क्या बीवी के वारिस जो हैं वो महर वसूल कर सकते हैं, तो इमाम साहब फरमाते हैं कि अगर महरे मुसम्मा था फिर तो बीवी के वारिस वो वसूल कर लेंगे खावंद के वारिसों से, और अगर खावंद ने बीवी के लिए कोई महर मुकर्रर ही नहीं किया था तो फिर इस सूरत में बीवी के वारिसों को कुछ नहीं मिलेगा। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि यहां जो महर मुकर्रर किया था वो ही महर देना पड़ेगा, और अगर कोई महर मुकर्रर नहीं किया था तो फिर महर मिसल देंगे, क्योंकि ये महर जो है ये खावंद के जिम्मा देन होता है और देन की अदायगी वरासत की तकसीम से पहले की जाती है। हां, एक सूरत है कि अगर बीवी का इंतकाल पहले हुआ था तो फिर खावंद उसका वारिस भी बन रहा है, तो बीवी के माल में भी कुछ खावंद का हिस्सा आ गया। खावंद के जिम्मे उसका महर देन है और खावंद का हिस्सा भी उस पर कुछ आ गया उसके माल के अंदर, तो लिहाजा खावंद का हिस्सा निकालकर बाकी जो महर होगा वो बीवी के वारिसों को दे दिया जाएगा। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि नहीं, इस सूरत में अगर मुसम्मा था फिर तो वो देन है, वो तो देना पड़ेगा, लेकिन अगर कुछ मुकर्रर नहीं किया था फिर महरे मिसल को भी हकम और फैसल नहीं बना सकते, इसलिए क्योंकि जब मियां बीवी दोनों का इंतकाल हो चुका है, मालूम हुआ जमाना गुजर चुका है, तो इन दोनों की जो हम उम्र है वो भी खत्म हो चुके होंगे, तो काजी महरे मिसल का अंदाजा किस तरह लगाएगा? भाई महरे मिसल का तो अंदाजा उस बीवी के हम उम्र औरतों के साथ लगाया जाता है, उस जैसी औरतों के साथ अंदाजा लगाया जाता है, जब उनके हम उम्र ही सब खत्म हो चुके हैं तो अब काजी महरे मिसल का अंदाजा भी नहीं लगा सकता, लिहाजा बीवी के वारिसों को कुछ भी नहीं मिलेगा अगर महर मुकरर नहीं किया था। और मैंने आपको बतलाया था कि उलमा फरमाते हैं कि इमाम साहब वो सूरत जिक्र फरमा रहे हैं जब इनके हम उम्र गुजर चुके हों। अगर इनके हम उम्र लोग जिंदा हैं, यानी मियां बीबी का इंतकाल हुआ है किसी हादसे की वजह से, मसलन जलजला आया और दोनों पर छत गिर पड़ी, दोनों का इंतकाल हो गया जवानी के अंदर ही, तो अभी तो इनके हम उम्र लोग जिंदा हैं भाई, तो वहां आराम से काजी अंदाजा लगा सकता है महरे मिसल का, तो वो फिर बीवी के वारिसों को दिया जाएगा। उसके बाद साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि अगर खावंद कोई चीज बीवी की तरफ भेजे और बीवी बाद में कहती है ये तो आपने मुझे तोहफा दिया था, और खावंद कहता है नहीं ये तो मैंने बतौर महर के दिया था, यानी महर की अदायगी की थी, तो इस सूरत में खावंद का कौल मोतबर है, इसलिए क्योंकि ये चीज देने वाला खावंद है तो उसको ज्यादा इलम है कि उसने किस नीयत के साथ ये चीज बीवी को दी थी भाई। लेकिन फिर साहिब हिदाया ने बताया कि वो चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो खाने पीने के लिए तैयार की गई है, इसलिए क्योंकि महर दे रहा है उसमें कुछ तो बका होनी चाहिए, जबकि ये खाने पीने की चीज जो है ये तो चंद घंटों के अंदर अगर इस्तेमाल न की जाए तो खराब हो जाएगी, तो अगर कोई आला किस्म का खाना खावंद ने भिजवाया और बाद में कहता है कि ये तो मैंने बतौर महर के तुम्हें दिया है, तो फिर इस सूरत में खावंद का कौल मोतबर नहीं है बल्कि बीवी के कौल का एतबार किया जाएगा। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। फसलुन व इदा तजव्वजन नसरानी नसरानियतन अला मैततिन औ अला गैर महरिन व दालिक फी दीनिहिम जाइज़ुन व दखल बिहा औ तल्लकहा क़ब्ल अद्दुखूल बिहा औ मात अन्हा फलैस लहा महरुन व कदालिकल हर्बियान फी दारिल हर्ब। मुसलमानों के महर की तफसील बयान करने के बाद अब आगे गैर मुस्लिमों के महर का बयान शुरू कर रहे हैं साहिब हिदाया भाई। तो फरमाते हैं वह इदा तजव्वजन नसरानी यू नसरानी यतन, जब निकाह किया किसी ईसाई ने नसरानी यतन किसी ईसाई औरत के साथ। नसरानी कहते हैं ईसाई को भाई, ईसाई जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन पर होने का दावा करते हैं भाई। तो कहते हैं जब वईदा तजव्वजन नसरानी यू नसरानी यतन, जब निकाह किया किसी ईसाई मर्द ने नसरानी यतन किसी ईसाई औरत के साथ, आला मैततिन मुर्दार पर, किसी मुर्दार पर किसी मुर्दा जानवर पर, औ अला गैरी महरीन या निकाह किया बगैर महर के, वदालिका फी दीनिहिम जाइजुन और ये उनके दीन में जायज था, व दखला बिहा और फिर खावंद ने उसे सोहबत कर ली, अव तल्लकहा क़ब्ल दुखूली बिहा या सोहबत से पहले उसको तलाक दे दी, او مات عنها یا خاوند اس کو چھوڑ کر مرا فلیس لہا مہرن تو اس عورت کے لیے مہر نہیں ہوگا. بھئی یاد رکھو یہ جو مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں متن کے اندر یہاں ذکر تو نصرانی ہے یعنی عیسائی لیکن مراد ذمی ہے کوئی بھی کافر ہو جو دار الاسلام میں رہتا ہو یہ وہ ان کافروں کی بات کر رہے ہیں جو دار الاسلام میں رہتے ہیں جبکہ جو دار الاسلام میں نہیں رہتے ان کا ذکر اسی متن کے آخر میں ہے وَكَذَلِكَ الْحَرْبِ یعنی فی دار الحربی اور اسی طرح ہے وہ دو حربی بھی جو دار الحرب میں رہتے ہیں. تو لہذا یہ ذمیوں کا حکم بیان ہو رہا ہے ذمی وہ غیر مسلم جو دار الاسلام میں رہتے ہیں اور سالانہ ٹیکس یعنی جزیہ ادا کرتے ہیں اور وہ معمولی سا ٹیکس ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر مملکت اسلامیہ سارا سال ان کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے. تو اس لیے ان کو ذمی کہا جاتا ہے کہ مملکت اسلامیہ کیا ہے ان کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہے. بھائی تو اب ایک ذمی نے نکاح کیا ہے ایک ذمیہ عورت سے اور مردار پر نکاح کیا. مردار سے مردار ہی نہیں مراد ایسی چیز مراد ہے جو مال نہ ہو. بھئی دیکھو کچھ چیزیں ہیں جو سب کے نزدیک مال شمار ہوتی ہیں جیسے درہم و دینار ہیں گندم ہے جو ہے جو بھی بازار میں چیزیں خرید و فروخت جن کی جاتی ہے یہ سب مال ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غیر مسلموں کے نزدیک تو مال ہیں مسلمانوں کے نزدیک مال نہیں ہیں جیسے شراب اور خنزیر. شراب اور خنزیر کی غیر مسلم بیع و شراء کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک مال ہے لیکن مسلمانوں کے نزدیک یہ مال نہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہ غیر مسلموں کے نزدیک مال ہیں اور نہ مسلمانوں کے نزدیک مال ہیں جیسے کہ مردار ہے یا خون ہے. تو میتا سے مراد ایسی چیز ہے جو کسی کے نزدیک بھی مال نہ ہو. تو کہتے ہیں وَإِذَا تَزَوَّجَ النَّصْرَانِيُّ نَصْرَانِيَّةً اور جب نکاح کیا ایک عیسائی مرد نے ایک عیسائی عورت کے ساتھ عَلَى مَيْتَةٍ کسی مردار پر یعنی ایسی چیز پر جو مال نہیں ہے او عَلَى غَيْرِ مَهْرٍ یا نکاح کیا غیر مہر پر وَذَلِكَ فِي دِينِهِمْ جَائِزٌ اور اس حال میں کہ یہ ان کے دین میں جائز ہے. یاد رکھو یہ شرط ضروری ہے کہ ان کے دین میں بھی جائز ہو کہ بغیر مہر کے نکاح ہو سکتا ہے. تو پھر آگے آپ کو بتلائیں گے کہ جب انہوں نے اس طرح نکاح کیا ہے اور ان کے دین میں بھی اس طرح جائز ہے تو پھر بعد میں بھی ان کا مہر نہیں ہوگا. یعنی دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جاتا ہے یا قاضی کے پاس اپنا مسئلہ لے کر آتے ہیں تو پھر قاضی یہی فیصلہ کرے گا کہ اس عورت کو کوئی مہر نہیں ملے گا کیونکہ یہ ان کے دین میں جائز ہے. بھائی اور اگر دین میں جائز نہ ہو پھر وہاں خاوند کو مہر مثل دینا پڑے گا. اگر ان کا دین بھی یہ کہتا ہے کہ بغیر مہر کے نکاح نہیں ہو سکتا تو پھر مہر مثل دینا پڑے گا. تو کہتے ہیں وَذَلِكَ فِي دِينِهِمْ جَائِزٌ اس حال میں کہ یہ یعنی بغیر مہر کے نکاح ان کے دین میں جائز ہے وَدَخَلَ بِهَا اور خاوند نے اس بیوی سے صحبت کر لی او طَلَّقَهَا قَبْلَ دُخُولِ بِهَا یا اس کو طلاق دے دی صحبت سے پہلے او مات عنها یا خاوند اس کو چھوڑ کر مرا فَلَيْسَ لَهَا مَهْرٌ تو عورت کے لیے مہر نہیں ہوگا. بھئی آپ نے پڑھا ہے کہ کوئی مسلمان اگر کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہاں پر اگر مہر ذکر کیا ہے تو وہی مقررہ مہر آئے گا اور اگر مہر ذکر نہیں کیا تو مہر مثل آ جائے گا. اور پھر اگر خاوند نے صحبت کر لی یا صحبت سے پہلے خاوند کا انتقال ہو گیا تو یہی مہر مسمہ یا مہر مثل پکا ہو جائے گا. اب یہ سارا دینا پڑے گا بھائی. اور اگر خاوند نے صحبت سے پہلے طلاق دے دی تو پھر اس صورت میں اگر مہر مسمہ تھا تو اس کا نصف دینا پڑے گا اور اگر مہر مثل تھا یعنی مہر ذکر ہی نہیں کیا تھا تو پھر اس صورت میں متعت طلاق دینا پڑے گا یعنی وہ تین کپڑے دینے پڑیں گے. لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ ان تمام صورتوں میں اگر یہ ان ذمیوں کے دین میں جائز تھا پھر چاہے خاوند صحبت کرے اس عورت کے ساتھ یا خاوند کا انتقال ہو جائے یا صحبت سے پہلے اس کو طلاق دے دے تمام صورتوں میں بیوی کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو کہتے ہیں فلیس لہا مہرن، تو سورت کے لیے مہر نہیں ہوگا، یعنی مہر یا جو بھی مہر کے حکم میں ہے، بعض صورتوں میں متعہ ملتا ہے، بعض صورتوں میں نصف مہر ملتا ہے، بعض صورتوں میں پورا مہر ملتا ہے، تو اس عورت کو کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ انہوں نے بغیر مہر کے نکاح کیا ہے اور یہ ان کے دین میں بھی جائز ہے۔ وَكَذَلِكَ الْحَرْبِ یعنی فی دار الحربی، اور اسی طرح ہے دو حربی دار الحرب میں، یعنی دار الحرب کے اندر اگر دو حربی آپس میں اس طرح نکاح کرتے ہیں، ایک حربی مرد ایک حربی عورت سے نکاح کرتا ہے اور انہوں نے مہر مقرر نہیں کیا یا مردار پر نکاح کیا ہے، تو اس صورت میں وہاں بھی کوئی مہر نہیں ہوگا۔ یعنی یہ وہ صورت بیان ہو رہی ہے جب میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے، یا مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن وہ اپنا مسئلہ ہمارے قاضی کے پاس لے آئیں، ان کے درمیان جھگڑا ہے اور وہ ہمارے قاضی کے پاس فیصلہ کروانے آ گئے ہیں، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے حربیوں کے اندر اگر انہوں نے اس طرح نکاح کیا ہے تو کوئی مہر وغیرہ نہیں آئے گا، اسی طرح ذمیوں کے اندر بھی اگر ان میں سے کوئی مسلمان ہوا یا یہ مسئلہ قاضی کے پاس لے آئے اور نکاح میں کچھ بھی مقرر نہیں کیا تو پھر مہر نہیں ملے گا بھائی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا یہاں دار الحرب آیا، یاد رکھو اصل میں تو دار الحرب اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ مملکت اسلامیہ ہر وقت حالت جنگ میں رہتی ہے، وہ ہے دار الحرب، جبکہ باقی ممالک ہر ملک کے ساتھ تو مملکت اسلامیہ حالت جنگ میں نہیں ہوگی، جیسے آج کل ہے اکثر ممالک کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ہاں سفیر بھی موجود ہوتے ہیں، تجارت بھی ہوتی ہے، لوگ بھی آتے جاتے ہیں، تو یہ دار الحرب نہیں ہے بھائی۔ لیکن یہاں دار الحرب سے دار الحرب نہیں مراد کہ جس کے ساتھ مسلمان حالت جنگ میں ہو، بلکہ یہاں مطلق غیر مسلموں کا ملک مراد ہے، یعنی جہاں ہمارے حاکم کا جہاں ہمارے خلیفہ کا حکم نہیں چلتا، وہ سب اسی حکم میں ہیں بھائی۔ یعنی وہاں پر اگر کوئی دو شخص غیر مسلم آپس میں نکاح کرتے ہیں اور انہوں نے مہر کچھ بھی مقرر نہیں کیا اور یہ ان کے دین میں جائز ہے، اور پھر ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہوتا ہے، یا دونوں جو ہیں وہ مسئلہ اگر ہمارے قاضی کے پاس لے آتے ہیں تو قاضی بھی انہی کے عقیدے کے مطابق فیصلہ کرے گا اور عورت کے لیے کوئی مہر یا متع وغیرہ نہیں ہوگا بھائی۔ تو کہتے ہیں وَكَذَلِكَ الْحَرْبِ یعنی فی دار الحربی، اور اسی طرح ہے دو حربی دار الحرب میں، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، اور یہ امام صاحب کے نزدیک ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ چاہے ذمیوں کے درمیان ہو، وہ ذمی جو دار الاسلام میں رہتے ہیں، اور چاہے یہ مسئلہ حربیوں کے درمیان ہو جو دار الحرب میں رہتے ہیں، سب کا ایک ہی حکم ہے بھائی کہ عورت کو کچھ بھی نہیں ملے گا جب یہ ان کے دین میں جائز ہے۔ وَهُوَ قَوْلُهُمَا فِي الْحَرْبِيَيْنِ، اور یہ صاحبین کا قول ہے حربیوں میں، صاحبین فرماتے ہیں اگر حربیوں کے اندر اس طرح ہوا پھر تو عورت کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن اگر ذمیوں کے درمیان اس طرح کا مسئلہ پیش آیا تو پھر اس عورت کو مہر مثل ملے گا یا متعا ملے گا، جو بھی صورت ہوئی۔ تو صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر یہ مسئلہ حربیوں کے درمیان پیش آیا پھر تو اسی طرح ہوگا، حربی عورت کے لیے قاضی مہر نہ ہونے کا فیصلہ کرے گا، لیکن اگر یہ مسئلہ ذمیوں کے درمیان پیش آیا، یعنی ایسے دو غیر مسلم جو دار الاسلام میں رہتے ہیں، انہوں نے آپس میں نکاح کیا تھا اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے دین میں بغیر مہر کے بھی نکاح ہو سکتا ہے، تو بھی وہ دار الاسلام میں رہتے ہیں لہذا دار الاسلام کے قوانین کے مطابق ان کا فیصلہ ہوگا، اور اس صورت میں اگر خاوند نے صحبت کر لی ہے یا خاوند کا صحبت سے پہلے انتقال ہو گیا ہے تو بیوی کو پورا مہر مثل ملے گا، اور اگر خاوند نے صحبت سے پہلے طلاق دے دی ہے تو پھر بیوی کو متعۃ الطلاق دیا جائے گا، یعنی وہ تین کپڑے ملیں گے۔ تو صاحبین کے نزدیک حربیوں میں عورت کو کچھ نہیں ملے گا، اور ذمی جو دار الاسلام میں رہتے ہیں وہاں عورت کو مہر مثل یا متعا ملے گا۔ میں نے بتایا یہ وہ صورت ہے جب ان دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے، یا دونوں مسلمان تو نہیں ہیں لیکن ویسے مسئلہ ہمارے قاضی کے پاس لے آئے بھائی۔ جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت عام ہے، और शरीयत के अंदर तो हुक्म है कि निकाह में माल का खर्च करना जरूरी है भाई। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं अंतब तगू बी अमवालिकुम, और हुजूर अलैहिस्सलाम की शरीयत आम है। ये तमाम कुफार ये भी हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में से हैं, अगरचे ये इस्लाम नहीं लाते मगर ये हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में से। और हुजूर अलैहिस्सलाम की शरीयत का हुक्म है कि निकाह के अंदर माल जरूर खर्च करना पड़ेगा। अगर कुछ जिक्र कर देंगे तो वही आएगा, अगर जिक्र नहीं करेंगे तो महरे मिसल आ जाएगा। तो इमाम जुफर फरमाते हैं कि यह मसला चाहे जिम्मियों के दरमियान पेश आए चाहे हरबियों के दरमियान पेश आए, हर हाल में महरे मिसल आएगा, या अगर सोहबत से पहले तलाक दी है तो मुता देना पड़ेगा, चाहे जिम्मी हो चाहे हरबी हो। भाई देखिए भाई कहते हैं वह हुआ कौलु हुमा फिल हरबी यानी, और यही कौल है साहिबैन का हरबियों में। वह अम्मा फि जिम्मियति फलाहा महरू मिसलिहा इन माता अनहा औ दखला बिहा, और बाकी जिम्मिया जो है तो उसके लिए महरे मिसल होगा इन माता अनहा अगर उसका खावंद उसको छोड़कर मरा, औ दखला बिहा या खावंद ने उसके साथ सोहबत कर ली तो फिर उसको महरे मिसल मिलेगा। वल मुतातु इन तल्लकाहा कबला दुखूली बिहा, और उस औरत के लिए मुता होगा अगर खावंद ने उसको सोहबत से पहले तलाक दे दी। वकाल जुफर रहमहुल्लाह, और इमाम जुफर रहमहुल्लाह फरमाते हैं लहा महरुल मिसलि फिल हरबी यानी अयजन, कि औरत के लिए माहर मिसल होगा हरबियों में भी, यानी अगर खावंद ने सोहबत की है या खावंद सोहबत से पहले खावंद का इंतकाल हुआ तो औरत को माहर मिसल मिलेगा, और अगर सोहबत से पहले खावंद ने तलाक दी है तो जैसे मुसलमानों के अंदर खावंद को मुता देना पड़ता है, यहां भी चाहे जिम्मी हो या हरबी खावंद को मुता देना पड़ेगा। तो हासिले कलाम क्या, इमाम साहब के नजदीक जिम्मी और हरबियों दोनों का एक ही हुक्म है, औरत को कुछ नहीं मिलेगा, जबकि इमाम जुफर रहमतुल्लाह के नजदीक जिम्मी और हरबियों दोनों का एक ही हुक्म है, दोनों सूरतों में औरत को महरे मिसल या मुता मिलेगा। जबकि साहिबैन जो हैं वो हरबियों के अंदर तो इमाम साहब के साथ हैं कि औरत को कुछ नहीं मिलेगा, और जिम्मियों के मसले में इमाम जुफर रहमतुल्लाह के साथ हैं कि जिम्मियों के अंदर औरत को महरे मिसल या मुता मिलेगा। सूरत अच्छी तरह समझ में आ गई, अब आइए इनके दलाइल देखिए भाई। लहू इमाम जुफर रहमतुल्लाह की दलील यह है कि अन्न शरअ मा शरअ इब्तिगा अन निकाह इल्ला बिल माली, कि शरीयत ने मा शरअ मशरूअ नहीं किया है इब्तिगा अन निकाह निकाह को तलाश करने को, शरीयत ने निकाह के तलाश करने को मशरूअ नहीं किया इल्ला बिल माली मगर माल के साथ। कुरान में अल्लाह क्या फरमाते हैं अन तबतगु बि अमवालिकुम, तो कहते हैं शरीयत ने मशरूअ नहीं किया इब्तिगाए निकाह को मगर माल के साथ। वहादा शरउ वका आमन, और हुजूर अलैहिस्सलाम की यह शरीयत आम होकर वाकई हुई है, यानी यह हुक्म सब के लिए है मुसलमानों और कुफार के लिए। फयसबुतुल हुक्म अलल उमूमी, तो यह हुक्म भी साबित हो जाएगा उमूम के तरीके पर, यानी सब के लिए साबित होगा, चाहे वो जिम्मी हो चाहे वो हरबी हो, सबके अंदर माल के बगैर निकाह नहीं हो सकता। वलहुमा, और साहिबैन की दलील यह है, साहिबैन फरमाते हैं कि एक दारुल हर्ब वाले हैं एक जिम्मी हैं, दोनों में फर्क है। जो दारुल हर्ब में रहने वाले हैं उन्होंने हमारे कवानीन का अपने ऊपर इल्तिजाम नहीं किया, याद रखो एक है इल्तिजाम और एक है इल्जाम। इल्तिजाम का माना है अपने ऊपर कोई चीज लाजिम करना, और इल्जाम अल्जम युल्जिम इल्जाम बाब इफाल का माना है दूसरे पर कोई चीज लाजिम करना। तो साहिबैन की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं ये जो दारुल हर्ब वाले हैं इन्होंने हमारे कवानीन को खुद भी नहीं माना, यानी खुद भी इल्तिजाम नहीं किया अपने ऊपर, और हम भी इन पर इन कवानीन को लाजिम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे खलीफा का वहां हुक्म नहीं चलता। तो ना यहां पर इल्तिजाम है और ना इल्जाम है, तो जब ना इल्तिजाम है और ना इल्जाम है तो इन पर शरई कवानीन लागू नहीं, लिहाजा हरबियों के अंदर तो कोई माल नहीं आएगा। लेकिन जिम्मी जो हैं, जिम्मियों ने तो हमारे कवानीन को तस्लीम किया है, वो दारुल इस्लाम में रहते हैं, तो लिहाजा उन्होंने हमारे कवानीन का अपने ऊपर इल्तिजाम किया है जिम्मियों ने। और नीज वो दारुल इस्लाम में रहते हैं, यहां हमारे पास विलायत इल्जाम भी है, हम उन पर अहकाम को लाजिम कर भी सकते हैं क्योंकि हमारे खलीफा की हकूमत है यहां पर। तो जिम्मियों ने हमारे कवानीन को माना भी है, यानी इल्तिजाम भी मौजूद और विलायत इल्जाम भी है क्योंकि यहां खलीफा का हुक्म जारी होता है, लिहाजा जिम्मियों पर हमारे अहकाम लाजिम होंगे और बगैर महर के निकाह जायज नहीं होगा भाई। और जब बगैर महर के निकाह जायज नहीं तो खुद ब खुद महरे मिसल आ जाएगा, तो महरे मिसल देना पड़ेगा। और अगर सोहबत से पहले तलाक दे दी खावन ने तो मुतातु तलाक देना पड़ेगा, यानी वो तीन कपड़े। सूरत समझ में आ गई। वलहुमा, और साहिबैन की दलील यह है कि अन्न अहल हर्ब गैर मुल्तजमीन अहकाम अल इस्लामी, कि अहले हर्ब जो हैं वो इस्लाम के अहकाम को अपने ऊपर लाजिम करने वाले नहीं, उन्होंने खुद भी अपने ऊपर इस्लाम के अहकाम को लाजिम नहीं किया। वह विलायतुल इल्जाम मुनकतियातुन लितबायुनि दारी, और नीस विलायत इल्जाम भी मुनकतिया है लितबायुनि दारी, दार के मुख्तलिफ होने से, वतन के और मुलक के मुख्तलिफ होने की वजह से विलायत इल्जाम भी मुनकते है, वो अलग मुल्क में रहते हैं जहां हमारे हाकिम का हुकाम नहीं चलता, तो विलायत इल्जाम भी मुनकते है लितबायुनि दारी, दार के मुख्तलिफ होने की वजह से। वह विलायतुल इल्जाम मुनकतियातुन लितबायुनि दारी, और विलायत इल्जाम भी उनसे मुनकतिया है लितबायुनि दारी, दार के मुख्तलिफ होने की वजह से। बिखिलाफी अहले जिम्मति, बखिलाफ अहले जिम्मा के, यानी जो जिम्मी हैं जो दारुल इस्लाम में गैर मुस्लिम रहते हैं। लिअन्नहुम मुल्तज़मू अहकामना फीमा यरजिउ इलल मुआमलाती, इसलिए क्योंकि इन्होंने इल्तिजाम किया है अहकामना हमारे अहकाम का, यानी इन्होंने अपने ऊपर हमारे अहकाम लाजिम किए हैं। फीमा यरजिउ इलल मुआमलाती, वो अहकाम जो मुआमलात की तरफ लौटते हैं। भाई एक तो इनके दीनी उमूर हैं, ये जो जिम्मी हैं इनके दीनी मामलात हैं, दीनी मामलात तो वो अपने मजहब के मुताबिक चलाते हैं, लेकिन मामलात के अंदर उन्होंने हमारे अहकाम को अपने ऊपर लाजिम किया है। जब उन्होंने यहां ममलिकत इस्लामिया के अंदर जिम्मी बनकर रहना कबूल किया और सालाना टैक्स देते हैं, हुकूमत के साथ मुआहिदा किया हुआ है, तो उन्होंने गोया खुद ही हमारे अहकाम को तस्लीम कर लिया है, अपने ऊपर लाजिम कर लिया है भाई। तो कहते हैं बिखिलाफ ही अहले जिम्मति, बखिलाफ जिम्मियों के। लिअन्नहुमुल तज़मु अहकामना, उन्होंने अपने ऊपर लाजिम किया है हमारे अहकाम को। फी मा यरजिउ इलल मुआमलाती, उन चीजों में जो लौटते हैं मामलात की तरफ। कर रिबा व जिना, जैसे कि सूद है और जिना है। जिम्मियों को सूदी लेन देन की इजाजत नहीं होगी ममलिकत इस्लामिया में, इसी तरह जिम्मियों को जिना की इजाजत नहीं हुए दारुल इस्लाम के अंदर। अगर कोई जिना करेगा तो उस पर हद जारी की जाती है भाई। मालूम हुआ सूदी लेन देन न करना, जिना न करना और इसके अहकाम उन पर जारी होना, यह बतलाता है कि उन्होंने मामलात में हमारे अहकाम का इल्तिजाम किया है, उनको तस्लीम किया है। तो याद रखो अगर जिम्मी भी कोई जिना करेगा और वो साबित हो जाए तो उस पर भी हद जारी की जाएगी भाई। वह विलायतुल इल्जामी मुतहक्किकतुन लित्तिहादी दारी, और नीज विलायत इल्जाम भी मुतहक्किकतुन साबित है लित्तिहादी दारी, दार के मुतहिद होने की वजह से। वो दारुल इस्लाम ही में रहते हैं तो हमारा और उनका दार एक ही है, लिहाजा विलायत इल्जाम भी है। खलीफा क्या कर सकता है, उन पर इन अहकाम को लाजिम कर सकता है। तो इन्होंने खुद भी इल्तिजाम किया है और नीज हमारे पास विलायत इल्जाम भी मौजूद है, लिहाजा यहां इन पर इस्लामी अहकाम जारी होंगे। लिहाजा जिम्मी अगर बगैर महर के निकाह करेंगे तो वह बगैर महर के नहीं होगा, बल्कि वहां महर मिसल आ जाएगा। वली अबी हनीफा रहिमहुल्ला, और इमाम साहब की दलील यह है कि अन्न अहल जिम्मति ला यल्तज़िमून अहकामना फी दियानाती वफी मा यअतक़िदून खिलाफहू फिल मुआमलाती। इमाम साहब फरमाते हैं कि देखो ये जो जिम्मी हैं इन्होंने दीनी मामलात के अंदर और इसी तरह मामलात के अंदर जिनमें वो हमारे खिलाफ एतिकाद रखते हैं, इन चीजों का अपने ऊपर लाजिम नहीं किया। भाई वो ममलिकत इस्लामिया में रहते हैं, ममलिकत इस्लामिया के बाकी कवानीन तो उन पर लाजिम हैं, लेकिन मामलात के अंदर जिसको वो अपने दीन के मुताबिक जायज समझते हैं वो अमल करते हैं। तो दीनी मामलात के अंदर भी वो अपने दीन के मुताबिक चलते हैं और मामलात के अंदर भी जिस चीज को वो अपने दीन के मुताबिक जायज समझते हैं वो उसी पर चलते हैं। चुनांचे आप देखते हैं वो शराब और खिंजीर की बैउ शिरा करते हैं, हालांकि मुसलमानों को तो शराब और खिंजीर की बैउ शिरा की इजाजत नहीं है। अब देखो शराब और खिंजीर की बैउ शिरा ये मामलात की कबील से है, दो आदमियों के दरमियान ये मामला होता है बैउ शिरा वाला। तो देखो ये मामलात के अंदर जिस चीज में वो हमारे खिलाफ का अकीदा रखते हैं तो उसके अंदर भी वो अपने ही अकीदे पर चलते हैं और शरीयत उनको रोकती नहीं है, उनको इजाजत है, वो आपस में शराब और खिंजीर की बैउ शिरा कर सकते हैं ममलिकत इस्लामिया के अंदर भी। मालूम हुआ मामलात के अंदर भी उन्होंने हमारे कवानीन को अपने ऊपर लाजिम नहीं किया, और नीज दीनी मामलात में तो जाहिर सी बात है दीनी मामलात तो वो अपने मजहब के मुताबिक ही करते हैं तो उनको भी उन्होंने अपने ऊपर लाजिम नहीं किया। तो दीनी मामलात हों या उनके आपस के मामलात हों जो तो वो अपने एतिकाद के मुताबिक उस पर अमल करते हैं, उन्होंने हमारे अहकाम को अपने ऊपर लाजिम नहीं किया। तो कहते हैं वली अबी हनीफा रहमतुल्लाह इमाम साहब की दलील यह है कि अन अहले जिम्मति ला यल्तजिमून अहकामना, कि अहले जिम्मा जो हैं उन्होंने अपने ऊपर लाजिम नहीं किया अहकामना हमारे अहकाम को, फिर दियानाती दीनी मामलात में यानी उनके इबादात वगैरह जो हैं उनके अंदर भी हमारे अहकाम को अपने ऊपर लाजिम नहीं किया, वफी मा यातकिदून खिलाफहू और उन चीजों में भी जिसमें वो हमारे खिलाफ का अकीदा रखते हैं, फिल मामलाती मामलात मामलात में भी जिन चीजों का वो हमारे खिलाफ का अकीदा रखते हैं उसमें भी उन्होंने अपने ऊपर हमारे अहकाम को लाजिम नहीं किया। और बाकी वह विलायत इल्जाम भी सैफी व बिल मुहाजती, और विलायत इल्जाम वो तो तलवार के जरिए होती है, वह बिल मुहाजती मुहाजह कहते हैं बहस व मुबासा करना, जीम मुशद्दद है भाई मुहाजा भाई, अच्छा ये हुज्जत से है हुज्जत भाई। तो कहते हैं वह विलायत इल्जाम बिसैफी वल मुहाजती, और विलायत इल्जाम तो तलवार या बहस व मुबाहसे के जरिए होती है। साहिबैन ने तो क्या जिक्र किया था कि जिम्मियों ने हमारे अहकाम का अपने ऊपर इल्तिजाम भी किया है और नीज ममलिकत इस्लामिया को विलायत इल्जाम भी है, वो जबरन भी इन पर क्या कर सकती है इन अहकाम को लाजिम कर सकती है। तो उसका जवाब दे रहे हैं इमाम साहब कि भाई विलायत इल्तिजाम भी नहीं है, इन्होंने अपने ऊपर हमारे अहकाम को लाजिम नहीं किया जैसे खिंजीर और शराब की बैउ शिरा है, और नीज विलायत इल्जाम भी यहां नहीं है, क्योंकि विलायत इल्जाम यानी दूसरे पर जबरन कोई चीज लाजिम करना या तो वह तलवार के जरिए होता है कि उनके साथ जंग की जाए लड़ाई की जाए, या बहस व मुबाहसे के जरिए होता है, और इन दोनों चीजों से मुसलमानों को और ममलिकत इस्लामिया को मना किया गया है। वो जिम्मी जो दारुल इस्लाम में रहते हैं उनसे जंग नहीं की जाती, उनके साथ कोई बहस व मुबाहसे नहीं किए जाते, हमें शरीयत ने यह हुक्म दिया है कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। मुल्की कवानीन को तो तस्लीम करेंगे लेकिन उनके दीनी मामलात या जिन चीजों में वो तुम्हारे खिलाफ अकीदा रखते हैं वहां उनको उनके हाल पर छोड़ दो, न तलवार के साथ हमें उन पर किसी चीज को लाजिम करने का हुक्म है और ना बहस व मुबाहसे के जरिए। हां अच्छे तरीके से दावत देते रहो, वो दावत दे सकते हो, लेकिन बहरहाल ममलिकत इस्लामिया को यहां विलायत इल्जाम नहीं है कि तलवार या बहस व मुबाहसे के जरिए ये अहकाम उन पर लागू कर दिए जाएं। तो कहते हैं वो विलायत इल्जाम बिसैफी व बिल मुहाजती, और विलायत इल्जाम तो तलवार के जरिए और बहस व मुबाहसा के जरिए होती है, व कुल्लु दालिका मुनक़ति अनहुम, और इनमें से हर एक इन जिम्मियों से मुनक़ति है। तो कहते हैं वकुल्लु दालिका मुनक़ति अनहुम, और ये तलवार और बहस व मुबाहसे में से तो हर एक जो है इनसे मुनक़ति है, बेअतबार अक़्दे ज़िम्मति अक़्दे ज़िम्मा के एतबार से कि ममलिकत इस्लामिया ने इनसे क्या अहद किया है, अक़्दे ज़िम्मा किया है भाई कि ये यहां जिम्मी बनकर रहेंगे और ये अपने दीनी मामलात में आजाद होंगे, मुल्की कवानीन का उनको ख्याल रखना पड़ेगा, तो ममलिकत इस्लामिया इनकी जान और माल की भी मुहाफिज है और दीनी मामलात में इनकी आजादी की भी मुहाफिज है, लिहाजा ना इनके साथ तलवार इस्तेमाल की जाएगी और ना बहसो मुबासा हुई। तो कहते हैं वकुल्लु दालिका मुनक़तिउन अन्हुम बिएतिबारि अक़्दि ज़िम्मति, और तलवार और बहसो मुबासा में से हर एक इनसे मुनक़ति' है अक़्दे ज़िम्मा के एतबार से। फ़इन्ना उमिरना बिअन्नत रुकहुम वमा यदीनूना, फ़इन्ना उमिरना, बस बेशक हमको हुक्म दिया गया है बिअन्नत रुकहुम कि हम इन लोगों को यानी जिम्मियों को भी छोड़ दें, वमा यदीनूना, और जिसको ये दीन बनाते हैं उसको भी छोड़ दें, यानी हमें यह हुक्म है कि हम जिम्मियों को और जिस चीज को ये दीन बनाते हैं उसको छोड़ दें, यानी इनको इनके हाल पर रहने दें, ये जिस तरह रहना चाहें रह सकते हैं। तो फइन्ना उमिरना भी अन्नत रुका हम वमा यदीनूना, वमा यदीनूना, जिसको ये लोग दीन बनाते हैं मजहब बनाते हैं। फ़इन्ना उमिरना भी अन्नत रुकहुम वमा यदीनूना, पस बेशक हमें हुक्म दिया गया है कि हम जिम्मियों को और जिस चीज को ये दीन बनाते हैं इसको छोड़ दें, यानी इनसे एराज करें। फसारू का अहले हर्बी, तो ये इसी तरह हो गए जैसे कि अहले हर्ब हैं। इमाम साहब की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं कि इन्होंने मामलात के अंदर जिन चीजों का हमारे खिलाफ अकीदा रखते हैं उसका अपने ऊपर इल्तिजाम भी नहीं किया और नीज हमें यहां विलायते इल्जाम भी नहीं है, क्योंकि वो तो तलवार या बहसो मुबासे के जरिए होगी और उससे तो हमें शरीयत ने मना किया है। मालूम हुआ न यहां इल्तिजाम है और ना इल्जाम है, तो ये भी अहले हर्ब की तरह हो गए। और अहले हर्ब के अंदर तो ऐ साहिबेन आप भी मानते हैं कि वहां उनके अकीदे के मुताबिक ही काजी फैसला करेगा। अगर महर के बगैर निकाह जायज है तो काजी भी क्या कहेगा कि इस औरत को कुछ नहीं मिलेगा, तो ये जिम्मी भी अहले हर्ब की तरह हो गए, तो दोनों का एक ही हुक्म होगा भाई। तो कहते हैं फसारू का अहले हर्बी, तो ये जिम्मी भी अहले हर्ब की तरह हो गए बेखिलाफ जिना। साहिबैन ने जिक्र किया था कि इन्होंने मामलात में हमारे कवानीन का इल्तिजाम किया है, हमारे अहकाम का अपने ऊपर इल्तिजाम किया है, जैसे रिबा की इनको भी इजाजत नहीं है सूदी मामलात की और जिना की भी इनको इजाजत नहीं है, तो उसका भी जवाब दे रहे हैं इमाम साहब कि भाई जिना जिना तो तमाम अदियान के अंदर हराम है, कोई दीन जिना की इजाजत नहीं देता, तो जब इनका अपना दीन इनको इजाजत नहीं दे रहा तो फिर इनको ममलिकत इस्लामिया में कैसे इजाजत हो सकती है जिना की, तो इसलिए इन पर हद जारी की जाती है, क्योंकि इस्लाम जिस तरह जिना से रोकता है इनका अपना दीन भी जिना से रोकता है भाई। और निज रिबा, रिबा का तो इस्तिस्ना है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिम्मियों से मुआहदा फरमाया था तो वहां आपने बाकायदा जिक्र फरमाया कि जिसने सूदी मामला किया फिर हमारा उसके साथ कोई मुआहदा नहीं है भाई, लिहाजा आपका जिना और रिबा को दलील के तौर पर पेश करना सहीह नहीं है भाई। तो कहते हैं बेखिलाफ जीना, बखिलाफ जीना के लिए अन्नहु हराम उनफिल अदियानी कुल्लिहा, जीना तो हराम है सारे दीनों के अंदर। वर रिबा मुस्तस्नन अन उकूदिहिम, और रिबा यानी सूद जो है ये तो इनके अकदों से मुस्तस्ना है, यानी इनको और अकदों की इजाजत है लेकिन रिबा की इजाजत नहीं, सूदी मामलात की इजाजत नहीं। तो कहते हैं वर रिबा मुस्तस्ना अन उकूदिहिम, और रिबा ये तो मुस्तस्ना है इनके उकूद से, लिकौलिही अलैहि सलाम, हुजूर अलैहि सलाम के इस फरमाने मुबारक के आपने फरमाया अला मन अरबा, अला बई हरफ तंबी है जिसका तर्जमा सुनो या आगाह रहो या खबरदार, जो भी आपको मुनासिब लगे आप इसका तर्जमा कर सकते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अला मन अरबा, खबरदार जिसने सूदी मामला किया, अरबा यूरबी का माना सूदी मामला करना, अला मन अरबा, आगाह रहो जिसने सूदी मामला किया, फलैसा बैनना व बैनहु अहदुन, तो हमारे और उसके दरमियान कोई मुआहिदा नहीं है। तो देखा सूदी मामले का हुजूर ने इस्तिस्ना फरमा दिया था कि जिम्मियों को इसकी भी इजाजत नहीं होगी। व कौलुहु फिल किताबी औ अला गैरी महरिन यहतमिलु नफ्यल महरी व यहतमिलु सुकूता, भाई मतन के अंदर आया था, मतन के अंदर आया था وَإِذَا تَزَوَّجَ النَّصْرَانِيُّ نَصْرَانِيَّةً عَلَى مَيْتَةٍ أَوْ عَلَى غَيْرِ مَهْرٍ. یہ علا غیر مہرین یہ متن کے اندر آیا اور یہ عبارت ہے جامع صغیر کی. بھئی میں نے بتلایا تھا کہ ہدایہ کا متن یا تو قدوری ہوگا یا جامع صغیر. بھئی تو جامع صغیر کے اندر کہتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ نے او علا غیر مہرین, یہ جو الفاظ ابھی متن میں آئے نکاح کیا ہے مردار پر او علا غیر مہرین کے الفاظ آئے ہیں, اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں دونوں احتمال ہیں. تو ایک صورت یہ ہے کہ بھئی نکاح کر رہے ہیں, مہر کو ذکر ہی نہیں کیا, مہر سے سکوت کر لیا, مہر پر خاموشی اختیار کر لی. تو اس میں بھی دیکھو غیر مہر ہے, مہر یہاں ذکر نہیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ باقاعدہ مہر کی صراحتاً نفی کر دیں کہ ہم نکاح کر رہے ہیں لیکن مہر کچھ نہیں ہوگا. تو یہ جو متن میں آیا کہ نکاح کیا غیر مہر پر, یہ دونوں صورتوں کا احتمال رکھتا ہے, مہر پر سکوت کر لیا جائے یا باقاعدہ مہر کی نفی کر دی جائے. دونوں صورتوں میں نکاح کس پر ہوا؟ غیر مہر پر ہوا. بھائی تو کہتے ہیں وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ, اور امام محمد رحمہ اللہ کا قول جو ہے کتاب یعنی جامع صغیر کے اندر, کون سا قول؟ یہ او علا غیر مہرین, یہ جو قول ہے يحتمل نفی المہری ويحتمل السکوتا, یہ مہر کی نفی کا بھی احتمال رکھتا ہے اور مہر سے سکوت کا بھی احتمال رکھتا ہے. وَقَدْ قِيلَ, اور تحقیق کہا گیا ہے فِلْمَيْتَتِ وَسُّكُوتِ رِوَایَتَانِ, کہ مردار میں اور سکوت کے اندر کہ مہر سے سکوت کر لیا جائے, مہر سے خاموشی اختیار کر لی جائے, اس بارے میں روایتانی دو روایتیں ہیں. بھئی یہ جو متن میں آیا علی غیر مہرین, اس میں تو دونوں احتمال ہیں, جبکہ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ میتا اور سکوت کے بارے میں امام صاحب سے دو روایتیں ہیں. ایک روایت تو وہ جو متن میں گزر گئی, امام صاحب کے نزدیک اگر مہر کچھ بھی نہیں ہے اور یہی ان کا عقیدہ بھی اور ان کا دین بھی یہی ہے تو پھر بیوی کو کچھ بھی نہیں ملے گا, جبکہ بعض فقہا فرماتے ہیں اس سلسلے میں ایک دوسری روایت بھی ہے امام صاحب سے اور وہ صاحبین کے موافق ہے, اس میں وہ فرماتے ہیں کہ مہر ملے گا. جیسے صاحبین فرماتے ہیں ذمی عورت کو ہر حال میں مہر ضرور ملے گا. بات سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں وَقَدْ قِيلَ, تحقیق کہا گیا ہے فِي الْمَيْتَةِ وَالسُّكُوتِ رِوَایَتَانِ, کے مردار اور سکوت کے بارے میں دو روایتیں ہیں امام صاحب سے. وَالْأَصَحُ أَنَّ الْكُلَّ عَلَى الْخِلَافِ, صاحب ہدایہ فرماتے ہیں وَالْأَصَحُ, اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ أَنَّ الْكُلَّ عَلَى الْخِلَافِ, کہ یہ سب کے سب اختلاف پر ہیں, یعنی ان سب میں اختلاف ہے, چاہے میتا ہو چاہے سکوت ہو مہر سے, چاہے مہر کی باقاعدہ صراحتاً نفی ہو, تینوں کے اندر اختلاف ہے. بعض فقہا نے تو کیا کہا تھا میتا اور سکوت کے اندر دو روایتیں ہیں, صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ سب میں اختلاف ہے, یعنی ایک ہی روایت ہے دو روایتیں نہیں ہیں. بعض فقہا کیا فرماتے ہیں میتا اور سکوت کے بارے میں امام صاحب کی دو روایتیں ہیں, ایک جو متن میں آ گئی اور ایک ان کا قول صاحبین کے مطابق بھی ہے, لیکن صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں والاصح ان الکل علی الخلاف, کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ سب جو ہیں اختلاف پر ہیں, یعنی یہاں ایک ہی روایت ہے اختلاف والی, دوسری روایت نہیں ہے. بھائی آگے دیکھیے فَإِن تَزَوَّجَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيَّةً عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ ثُمَّ أَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَلَهَا الْخَمْرُ وَالْخِنْزِيرُ. صورت مسئلہ یہ, ایک ذمی آدمی نے ذمیہ عورت سے نکاح کر لیا اور مہر کے طور پر شراب یا خنزیر مقرر کیے. مہر کیا مقرر کیا؟ شراب مقرر کی یا خنزیر مقرر کی. پھر دونوں مسلمان ہو گئے یا دونوں میں سے ایک مسلمان ہوا, تو امام صاحب فرماتے ہیں اس عورت کو وہی خمر یا خنزیر ہی ملیں گے, اس عورت کو وہی خمر یا خنزیر ہی ملیں گے. تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی مسلمان کے لیے تو खमर और खिंजीर का न तमल्लुक जायज है न तमलीक जायज है। तमल्लुक का माना है खुद मालिक बनना और तमलीक का माना है दूसरे को मालिक बनाना। मुसलमान न खुद शराब और खिंजीर का मालिक बन सकता है न किसी दूसरे को मालिक बना सकता है। यहां एक और बात याद रखना भाई, मालिक बनना और चीज है और मालिक होना और चीज है भाई। देखो एक शख्स है और वो गैर मुस्लिम है और उसके पास शराब मौजूद है या खिंजीर मौजूद है, तो देखो ये उस शराब या खिंजीर का मालिक है, गैर मुस्लिम है ये आदमी भाई। फिर ये शख्स मुसलमान हो गया तो अब भी ये शराब और खिंजीर का यही शख्स मालिक है। तो देखो ये इस शराब और खिंजीर का मालिक है तो यहां तमल्लुक नहीं है, तमल्लुक कहते हैं मालिक बनना, यानी मुसलमान मालिक ना हो और फिर मालिक बन जाए, यानी यूं कहो नया मालिक नहीं बन सकता। अगर एक चीज पहले से ही उसकी मिल्कियत में मौजूद है तो वो उसका मालिक रहेगा भाई। तो जिम्मी मुसलमान हुआ, शराब या खिंजीर उसकी मिल्कियत में पहले से मौजूद थे तो मुसलमान होने के बाद भी ये इनका मालिक है भाई। तो यहां तमल्लुक नहीं है, तमल्लुक यह है कि एक शख्स मुसलमान है और वो किसी से शराब या खिंजीर खरीदता है या कोई इसको तोहफे के तौर पर देता है और फिर ये उसका मालिक बन जाए, यानी तमल्लुक पाया जाए, तो नहीं, तमल्लुक यानी मालिक बनना नहीं हो सकता। तो मालिक होना तो हो सकता है लेकिन मालिक बनना नहीं हो सकता। तो मुसलमान के लिए न तमल्लुक के खमरो खिंजीर जायज है न तमलीक के खमरो खिंजीर जायज है। अब आइए उस मसले पर जो मतन में था। देखो सूरत मसला ये, एक जिम्मी और जिम्मिया के दरमियान निकाह हुआ और उन्होंने आपस में शराब या खिंजीर मुकरर कर लिए महर के तौर पर, फिर दोनों मुसलमान हो गए या दोनों में से कोई एक मुसलमान हो गया, तो फिर इमाम साहब फरमाते हैं उस जिम्मिया औरत को वही शराब या वही खिंजीर उसको मिलेंगे। साहिब हिदाया इसका माना बयान करेंगे कि माना यह है कि वो शराब और खिंजीर मुअय्यन हो भाई, गैर मुअय्यन ना हो, क्या हो, मुअय्यन हो। आगे चलकर आपको बतलाएंगे कि भाई ये जो शराब और खिंजीर जब मुअय्यन हो तो निकाह करते ही वो औरत इनकी मालिका बन गई, वो औरत इनकी क्या बन चुकी है भाई, शराब और खिंजीर मुअय्यन है। मसलन सामने शराब काफी सारी पड़ी हुई है, एक जिम्मी एक जिम्मिया से निकाह करता है और कहता है ये जो सामने शराब पड़ी है ये बतौर महर के मैं तुम्हें दूंगा, या उसके पास खिंजीरों का एक रेबड़ मौजूद है सामने, वो कहता है ये जो खिंजीरों का रेबड़ है ये तुम्हें बतौर महर के मैं दूंगा। तो ये जो मुअय्यन शराब और खिंजीर हैं, याद रखो जैसे ही अक़्द निकाह होगा औरत इनकी मालिक बन गई। तो खावंद की तरफ से तमलीक पाई गई और औरत की तरफ से शराब या खिंजीर का तमल्लुक पाया गया, लेकिन ये तो उस वक्त हुआ है जब अभी ये मुसलमान ही नहीं, कुफर की हालत में है, और कुफर की हालत में जब ये हैं फिर तो इनके लिए तमल्लुक और तमलीक इनके मजहब के मुताबिक जायज था भाई, लिहाजा औरत उसी वक्त मालिक बन गई थी। तो जब ये पहले से मालिक बन चुकी है तो अब मुसलमान भी हो जाए तो वो तो पहले ही इसकी मालिक बन चुकी है भाई, तो यही शराब और खिंजीर इसके होंगे। बात समझ में आ गई। देखिए भाई कहते हैं फइन तज़व्वजा ज़िम्मीयु ज़िम्मियतन, अगर निकाह किया किसी जिम्मी ने ज़िम्मिया औरत से अला खमरिन औ खिंजीरिन शराब या खिंजीर पर, सुम्मा अस्लमा फिर ये दोनों मुसलमान हो गए, औ अस्लमा अहदुहुमा ये दोनों में से कोई एक मुसलमान हुआ, फलहल खमरु वल खिंजीरु तो इस औरत के लिए वही शराब और खिंजीर होंगे, क्योंकि ये पहले से क्या बन चुकी है उसकी मालिक बन चुकी है भाई। तो यहां ना तमल्लुक है और ना तमलीक है। व मानाहु और इसका माना यह है, अब देखो साहिब हिदाया बयान फरमा रहे हैं, व मानाहु और माना इसका यह है, इदा काना बी आयानिहिमा जब ये दोनों मुअय्यन हो, इजा काना देखो तस्निया का सीगा है, इजा काना बी आयानिहिमा जब ये शराब और खिंजीर दोनों मुअय्यन हो, वल इस्लामु कब्ल अल कब्जी और इस्लाम कब्जे से पहले हो, यानी खावंद ने ये तो कहा था ये खमार या ये खिंजीर ये तुम्हें मैं महर के तौर पर दूंगा, लेकिन औरत ने अभी उस पर कब्जा नहीं किया था, कब्जे से पहले मुसलमान हो गई, तो कब्जे से अब कुछ नहीं होता, वो पहले से मालिक है, वो उस पर कब्जा कर सकती है, तो औरत इनकी मालिक है, वो कब्जा कर ले और ले ले, फिर उसके बाद उसकी मर्जी है। अब अगर दोनों मुसलमान हो गए हैं तो फिर औरत इस शराब को सिरके में तब्दील कर सकती है कि शराब में अगर नमक डाल दिया जाए, कोई खास तरीका होगा, उस तरीके से उसमें नमक डाला जाता है या उसको धूप में रखा जाता है तो वो सिरके में बदल जाती है, और सिरके का इस्तेमाल और बेउ शिरा तो मुसलमान के लिए जायज है। तो औरत क्या कर सकती है, इस शराब को सिरके में तब्दील कर सकती है, या अगर इस नहीं तब्दील करना चाहती तो शराब को जाया कर देगी, भाई शराब बहा देगी। और इसी तरह खिंजीर है, खिंजीर को या वो कत्ल करवा देगी, कत्ल वगैरह करवा दे, जो भी करना चाहे। बात समझ में आ गई? तो देखो, शराब और खिंजीर मुअय्यन है और इन पर कब्जे से पहले औरत क्या हुई है, मुसलमान हुई है, या औरत हुई है, या चाहे मर्द मुसलमान हुआ है। भाई इश्काल यही होता है ना, औरत अगर मुसलमान हुई है तो उसके लिए तमल्लुक नहीं जायज, और अगर खावंद मुसलमान हुआ है तो उसके लिए तमलीक नहीं जायज। लेकिन बतलाया कि भाई ये तो पहले से ही मालिक बन चुकी है ना, यहां तमल्लुक है ना तमलीक है, चाहे मर्द मुसलमान हो चाहे औरत मुसलमान हो, लिहाजा औरत को यही शराब और खिंजीर मिलेंगे बतौर महर के, पहले से ही मालिक बन चुकी है, बस सिर्फ कब्जा खावंद का है। अब वो कब्जा किसका आ जाएगा, बीवी का आ जाएगा। तो कहते हैं वह माना हो, और माना इसका यह है कि इदाकान अभी आयानी ही मावल इस्लाम कबलल कब्जी, कि जब यह शराब और खिंजीर मुआयन हो और इस्लाम जो है कब्जे से पहले हो, वह इनकाना भी गैरी आयानी ही मां, और अगर यह शराब और खिंजीर गैर मुआयन हो, यानी देखो एक सूरत तो ये थी शराब सामने पड़ी थी कि ये शराब तुम्हें दूंगा या ये खिंजीरों का रेवड़ है ये मैं तुम्हें महर के तौर पर दूंगा, और एक सूरत यह है कि वो शराब और खिंजीर मुअय्यन नहीं, खावंद वैसे निकाह करते हुए उससे कहता है कि मैं तुम्हें महर के तौर पर एक मन शराब दूंगा। अब जहां से भी वो शराब लाकर देना चाहे वो जिम्मी जिम्मिया को दे सकता है, तवज्जो है, लेकिन सूरत चल रही है अभी उसने अदा नहीं की और उससे पहले ही दोनों या दोनों में से एक मुसलमान हो गया, तो अब निकाह किस पर किया है, गैर मुअय्यन शराब पर, एक मन शराब मसलन खावन ने कहा कि मैं बीवी को दूंगा, या गैर मुअय्यन खिंजीरों पर निकाह किया है, खावन ने बीवी से कहा कि मैं तुम्हें 10 आला किस्म के खिंजीर बतौर महर के दूंगा। तो देखो गैर मुअय्यन खिंजीरों पर निकाह कर लिया। तो इस सूरत में इमाम साहब फरमाते हैं कि गैर मुअय्यन शराब या गैर मुअय्यन खिंजीर थे, उन पर निकाह किया था, उनकी तो औरत मालिक नहीं बनी थी उस वक्त। जब वो शराब और खिंजीर मुअय्यन ही नहीं है तो फिर औरत को कैसे उनका मालिक करार दिया जा सकता है, पहले मुतअय्यन तो हो फिर ही औरत को उनका मालिक करार दिया जा सकता है। तो मालूम हुआ जब गैर मुअय्यन शराब है या गैर मुअय्यन खिंजीर है तो औरत अभी तक उनकी मालिक नहीं बनी, अब जब खावन देगा तब मालिक बनेगी, और अब तो दोनों में से एक मुसलमान हो चुका है या दोनों मुसलमान हो चुके हैं, तो अगर दोनों मुसलमान हुए हैं तो फिर शराब और खिंजीर का तो ना तो तमल्लुक जायज है और ना तमलीक, और अगर दोनों में से एक मुसलमान हुआ है, औरत मुसलमान हुई है, तो उसके लिए तो तमल्लुक शराब या तमल्लुक खिंजीर जायज नहीं, और अगर खावंद मुसलमान हुआ है तो खावंद के लिए तमलीक खमर भी जायज नहीं और तमलीक खिंजीर भी नहीं जायज। सूरत समझ में आ रही है? तो लिहाजा अगर गैर मुअय्यन शराब और खिंजीर पर निकाह किया था इस्लाम लाने से पहले और फिर बाद में दोनों इस्लाम लिया या दोनों में से एक मुसलमान हो गया, तो इमाम साहब फरमाते हैं अगर शराब मुकर्रर की थी गैर मुअय्यन शराब तो फिर उस शराब की कीमत दे देगा खावंद, और अगर गैर मुअय्यन खिंजीर मुकर्रर किए थे तो फिर वहां महरे मिसल आ जाएगा, शराब की कीमत दे देंगे और खिंजीर की कीमत भी नहीं देंगे बल्कि वहां महरे मिसल आ जाएगा। ये आगे चलकर सारी तफसील साहिबे हिदाया बयान करेंगे, लेकिन मुख्तसरन यहां समझ लो, शराब में कीमत क्यों देंगे, गैर मुअय्यन शराब मुकर्रर की थी, इमाम साहब क्या फरमाते हैं, दोनों मुसलमान हो गए, एक मुसलमान हो गया, अब उसकी कीमत दे दे। वजह यह कि शराब मिसलियात में से है, आपने पढ़ा है कि चीजें दो किस्म पर हैं, या वो मिसलियात होती हैं या ज़वातुल क़ियम। मिसलियात वो चीजें हैं जिनका मिसल बाजार से मिल जाता है, और मिसलियात तीन चीजें हैं, मकीलात वो चीजें जिनको किसी बर्तन में मापा जाता है, जैसे दूध वगैरह है या पेट्रोल है, और मौजूना जिनका वजन किया जाता है जैसे चीनी वगैरह है, और कुछ मादूदात मुतकारिबा हैं जिनको गिन कर बेचा जाता है, वो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं यानी उनमें बहुत थोड़ा फर्क होता है, उसे शुमार नहीं किया जाता, जैसे अंडे हैं भाई वो एक दर्जन या दो दर्जन तादाद के एतबार से बेचे जाते हैं। तो ये जो मिसलियात हैं, याद रखो मिसलियात के अंदर उस चीज का मिसल देना पड़ता है और बाकी चीजें जवातुल कीम है, कीमत वाली हैं, तो वहां उसकी कीमत देना पड़ती है। मसलन एक शख्स ने अगर किसी की एक मन गंदुम जाया कर दी तो गंदुम किस में से है? मिसलियात में से है, तो इस शख्स पर उसका मिसल लाजिम होगा और ये उसको एक मन गंदुम लाकर दे देगा। और अगर किसी ने किसी की जवातुल कीम चीज जाया की, मसलन किसी ने किसी की गाय हलाक कर दी, तो अब गाय ये तो जवातुल कीम में से है, लिहाजा अब इस शख्स को ये नहीं कहेंगे कि इसी जैसी गाय ला कर दो, क्योंकि गाय का तो मिसल नहीं मिल सकता भाई। जाहिरी तौर पर इस जैसी गाय भी हो फिर भी बातनी सिफात अलग अलग होती हैं, तो लिहाजा गाय जवातुल कीम में से है, तो वहां पर फिर उस गाय की कीमत उस आदमी को देना पड़ेगी भाई। तो मिसलियात में क्या दिया जाता है? मिसल, और जवातुल कीम में कीमत दी जाती है। तो इमाम साहब फरमाते हैं जब गैर मुआयन शराब महर के तौर पर मुकरर की थी तो शराब का मिसल तो शराब ही है, तो शराब नहीं दे सकता भाई, क्योंकि शराब मुसलमान के लिए ना तमल्लुक जायज है और ना तमलीक, तो यहां पर उसकी कीमत दे देगा। तो मिसली के अंदर मिसल दिया जाए तो कहते हैं इसने ऐन शय दे दी, एक ने दूसरे की गंदुम जाया की है उतनी ही गंदुम लाकर दे देगा, तो हम कहेंगे इसने ऐन शय जो इस पर वाजिब थी वही अदा कर दी। तो मिसलियात के अंदर मिसल दिया जाए तो कहते हैं ऐन शय अदा कर दी। लिहाजा शराब के अंदर हम कीमत वाजिब करेंगे, तो अब जब शराब की कीमत दे रहा है तो यूं नहीं कहेंगे ऐन वो चीज दे रहा है, बल्कि यूं कहेंगे उसका बदल दे रहा है। और शराब तो नहीं दे सकता मुसलमान किसी दूसरे को, हां उसका बदल कोई और चीज तो दे सकता है, तो यहां शराब की कीमत दे देगा। जबकि खिंजीर के अंदर कीमत भी नहीं दे सकता, इसलिए क्योंकि खिंजीर किस में से है? जवातुल कीम में से, और जवातुल कीम के अंदर कीमत देना इसी तरह है जैसे ऐन वही चीज दे रहा है। एक शख्स ने दूसरे की गाय हलाक की है, गाय किस में से है? जवातुल कीम में से, तो इस शख्स पर उस गाय की कीमत वाजिब हो जाएगी, ये उसकी कीमत उसको देगा। और जब कीमत देगा तो यूं ही समझा जाएगा ये इसको गाय ही दे रहा है। बात समझ में आ गई? तो लिहाजा खिंजीर के अंदर जब गैर मुआयन खिंजीर मुकरर किए थे तो खामन को यह नहीं कहेंगे कि इसकी कीमत दे दो, क्योंकि अगर कीमत देगा तो यह तो इसी तरह है जैसे ऐन खिंजीर ही दे रहा है, क्योंकि जवातुल कीम में कीमत देना भी किसकी तरह है? ऐन उसी शय के देने की तरह है। तो लिहाजा खिंजीर की सूरत में कीमत खामन पर वाजिब नहीं की जाएगी, बल्कि वहां फिर महरे मिसल देना पड़ेगा। क्या आ जाएगा? महरे मिसल, इस जैसी औरतों का जो महर होता है वो देना पड़ेगा। मसला समझ में आया? हासिल कलाम फिर समझ लें। इमाम साहब के नजदीक गैर मुस्लिम मर्द और औरत ने आपस में निकाह किया है और मुआयन शराब या मुआयन खिंजीर को बतौर महर के मुकरर किया है, फिर बाद में इन दोनों में से कोई एक मुसलमान हो गया कब्जे से पहले, तो भी इमाम साहब फरमाते हैं औरत पहले से मालिकन बन चुकी है इन चीजों की, लिहाजा यही चीजें इसको दे दी जाएंगी। तो यहां ना तमलीक है और ना तमल्लुक है। और अगर शराब और खिंजीर गैर मुआयन हुए तो फिर इस सूरत के अंदर वो शराब की तो कीमत दी जाए, मिसलियात में मिसल दिया जाए तो यूं समझा जाता है बेआईनी ही वही चीज दे रहा है, लेकिन शराब का मिसल तो शराब है वो तो हम दे नहीं सकते, तो यहां उसकी कीमत देने का हम हुक्म दे देंगे और ये गोया शराब का बदल दे रहा है, शराब नहीं दे रहा। जबकि खिंजीर के अंदर उसकी कीमत नहीं दे सकता खामन, क्योंकि खिंजीर तो जवातुल कीम में से है और जवातुल कीम के अंदर कीमत देना इसी तरह है जैसे ऐन वही चीज दे रहा है, तो अगर हम कहें कीमत देनी पड़ेगी ये तो इसी तरह हो गया गोया ऐन खिंजीर ही दे रहा है, तो इसलिए हमने कहा कि खिंजीर के अंदर कीमत भी नहीं दे सकता, बस यहां पर महर मिसल आ जाएगा। यूं समझो कुछ महर मुकरर किया ही नहीं था, या ऐसी चीज महर मुकरर की है जो महर बनने की सलाहियत ही नहीं रखती और इस सूरत में महरमी सलाता है, तो यहां भी महरमी सलाह जाएगा। सूरत समझ में आ गई। तो कहते हैं वह इन काना बिगैर आयानिहिमा, और अगर ये शराब और खिंजीर गैर मुआयन थे, फलाहा फिल खमरिल कीमतु, तो औरत के लिए शराब में उसकी कीमत होगी, शराब की कीमत उसको दी जाएगी। वह फिल खिंजीर महरुल मिसली, और खिंजीर के अंदर औरत के लिए महर मिसल होगा। वहाजा इंद अबी हनीफा रहिमहुल्लाह, और ये इमाम साहेब के नजदीक है। ये सारी तफसील किसके नजदीक है? इमाम साहेब के नजदीक। वकाल अबू यूसुफ रहमहुल्लाह लहा महरुल मिसली फिल वजहैन, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि औरत के लिए महर मिसल होगा दोनों सूरतों में, यानी चाहे शराब और खिंजीर मुआयन हो चाहे गैर मुआयन, दोनों सूरतों में महर मिसल औरत को मिलेगा। तो कहते हैं वकाल अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह लहा महरुल मिसली फिल वजहैन, और इमाम अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह फरमाते हैं इस औरत के लिए महर मिसल होगा दोनों सूरतों में। कौन सी दो सूरतें? चाहे ये मुआयन हो चाहे गैर मुआयन हो। वकाल मुहम्मद रहिमहुल्लाह तआला लहल कीमतु फिल वजहैन, और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं इस औरत के लिए कीमत होगी दोनों सूरतों में। दोनों सूरतों में क्या होगी? कीमत होगी, यानी चाहे शराब और खिंजीर मुतायन हो या गैर मुतायन, दोनों सूरतों में इनकी कीमत देना पड़ेगी। शराब की भी कीमत देना पड़ेगी, खिंजीर की भी कीमत देना पड़ेगी। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि दोनों सूरतों में महर मिसल देना पड़ेगा, शराब और खिंजीर चाहे मुआयन हो चाहे गैर मुआयन, इनकी कीमत नहीं देंगे बल्कि महरे मिसल देंगे भाई। तो कहते हैं वकाल मुहम्मद रहमहुल्लाह लहल कीमत फिल वजहैन, की सौरत के लिए इनकी कीमत होगी दोनों सूरतों में, यानी चाहे ये मुआयन हो या गैर मुआयन। वजहु कौलिहिमा, साहिबैन के कौल की वजह यह है भाई। पहले एक दो बातें समझ लें फिर आपको साहिबैन की दलील समझ में आएगी। याद रखो मबीहे के अंदर कबल कबज तसरुफ जायज नहीं, मबीहे में कबल कबज तसरुफ जायज नहीं, जबकि समन के अंदर कबल कबज भी तसरुफ जायज है। मसलन देखो, आपकी जेब पर एक कलम लगा हुआ है, मैंने आपसे कहा कि यह कलम मैंने आपसे 1000 रुपए में खरीद लिया, आपने कहा कि मुझे मंजूर है, ईजाब और कबूल होते ही मैं इस कलम का मालिक बन गया, कलम अगरचे अभी आपकी जेब पर है लेकिन मैं मालिक बन चुका हूं, और मेरे जिम्मे आपके 1000 बतौर समन के आ गए हैं भाई, अब मेरे जिम्मे हैं भाई। ये मबिया जो अभी आपके कब्जे में है, आपकी जेब पर यह कलम लगा हुआ है, मैं इस मबीए में तसर्रुफ करना चाहता हूं कब्जा करने से पहले ही। मसलन मैं आपसे कहता हूं कि यह कलम रहने दें, यूं करें, इसकी जगह मुझे यह किताब दे दें, तो यह तो मैं मबीए में तसर्रुफ कर रहा हूं उस पर कब्जा करने से पहले। याद रखो यह जायज नहीं है। हां मैं आपसे कलम ले लेता हूं, उस पर कब्जा कर लेता हूं, फिर मैं आपसे कह सकता हूं यह कलम ले लो और इसकी जगह मुझे किताब दे दो। तो मबीए में कबल कबस तसरुफ जायज नहीं। या इसी तरह यह कलम आपकी जेब पर लगा हुआ है और मैं इसका मालिक बन चुका हूं, इजाब और कबूल हो चुका है, अब मैं एक और साथी से कहता हूं कि यह जो कलम यह सामने साथी की जेब पर लगा है मैं इसका मालिक बन चुका हूं, यह मैं तुम्हें बतौर तोहफे के देता हूं, यह तुम ले लो। नहीं भाई, ये तो मैं मबीए में कबल कबज तसरुफ कर रहा हूं, किसी को हिबा कर रहा हूं कब्जे से पहले ही, ये जायज नहीं है भाई। बात समझ में आ गई, मैं कब्जा कर लूं फिर मैं जिसको चाहूं हिबा कर सकता हूं। या तीसरी सूरत मसलन कि मैंने आपसे कलम खरीद लिया, कलम अभी आपके कब्जे में है, एक और साथी से मैं कहता हूं कि ये जो कलम इसकी जेब पर लगा है ये मैंने खरीद लिया है, और अगर अब तुम खरीदना चाहते हो तो मैं तुम्हें 1100 रुपए में दे दूंगा, मैंने 1000 का खरीदा है तुम्हें 1100 रुपए में फरोख्त कर दूंगा। तो याद रखो यह जायज नहीं है क्योंकि मैं मबीए में कब्जे से पहले तसर्रुफ कर रहा हूं और मबीए में कबल अल कब्ज तसर्रुफ जायज नहीं। मैं कब्जा कर लूं फिर चाहे मैं इसको तोड़ूं, चाहे किसी को तोहफा दूं, चाहे किसी को बेचूं, वो मेरी मर्जी है, लेकिन वो कब्जे के बाद मैं तसर्रुफ कर सकता हूं। जबकि इसके मुकाबले में समन जो है उसमें कबल अल कब्ज भी तसर्रुफ जायज है। आपके मैंने 1000 रुपए देने हैं, अभी आपने वसूल नहीं किए, आप मुझे कहते हैं कि यूं करें 1000 रुपए के बजाय मुझे ये किताब दे दें, तो अब आप देखो समन के अंदर तसर्रुफ कर रहे हैं कब्जे से पहले और ये जायज है, आप तसर्रुफ कर सकते हैं। तो हासिल कलाम क्या हुआ कि मबीए में कबल अल कब्ज तसर्रुफ जायज नहीं, लेकिन समन में कबल अल कब्ज भी तसर्रुफ जायज है। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब वो कलम जो आपकी जेब पर लगा हुआ था वो मैंने आपसे ले लिया, पहले मैंने आपसे आकद किया था, अब मैंने उस कलम पर कब्जा भी कर लिया आपकी इजाजत से, तो जैसे ही मैं कब्जा करूंगा अब मैं इसमें जो तसर्रुफ करना चाहूं कर सकता हूं। मालूम हुआ आकदे बैअ की वजह से मैं इस कलम की जात का मालिक बन गया था, मैं इस कलम के जात का मालिक बन गया था, और जब मैंने इस कलम पर कब्जा भी कर लिया अब मैं इसमें जो भी तसर्रुफ करना चाहूं कर सकता हूं। मालूम हुआ कब्जे से मैं तसर्रुफ का मालिक बन गया, अकद से मैं जात का मालिक बना था और कब्जे की वजह से तसर्रुफ का मालिक बन गया। उससे पहले मैं तसर्रुफ नहीं कर सकता था, कब्जे के बाद ही तसर्रुफ कर सकता हूं। मालूम हुआ कब्जे की भी मुशाबहत आ गई अकद के साथ, कब्जे की मुशाबहत आ गई किसके साथ, अकद के साथ, क्योंकि अकद की वजह से मिलके ऐन हासिल हुई मुझे, तो कब्जे की वजह से मिलके तसर्रुफ मुझे हासिल हो गया। जब मैंने अकद किया था तो मैं इस कलम का मालिक बन गया था, इसकी जात का, तो क्या कहेंगे अकद की वजह से मिलके ऐन मुझे हासिल हुई, उस ऐन का मैं मालिक बन गया, और कब्जे की वजह से मिलके तसर्रुफ मुझे हासिल हुई। बात समझ में आ गई, आकद की वजह से क्या आता है मिलके ऐन, और कब्जे की वजह से मिलके तसर्रुफ। मालूम हुआ कब्जा आकद के मुशाबे है, कब्जा आकद के मुशाबे है, जैसे आकद की वजह से एक ऐसी चीज आई जो पहले नहीं थी, यानी मिलके आयन पहले नहीं थी, आकद की वजह से आ गई, इसी तरह कब्जे की वजह से भी एक ऐसी चीज आ गई जो पहले नहीं थी, यानी मिलके तसरुफ जो पहले नहीं थी कब्जे के बाद मिलके तसरुफ आ गई, तो कब्जे की मुशाबहत हो गई आकद के साथ। तो साहिबैन फरमाते हैं कि जैसे मुसलमान के लिए शराब और खिंजीर पर आकद नहीं जायज, इसी तरह शराब और खिंजीर पर कब्जा भी नहीं जायज, क्योंकि कब्जा भी अकद के मुशाबे है। दलील समझ में आ रही है, साहिबैन फरमाते हैं कि अकद की वजह से मिलके ऐन हासिल होती है, इसी तरह कब्जे की वजह से मिलके तसर्रुफ हासिल होती है, तो इस कब्जे की मुशाबहत आ गई अकद के साथ, और शराब और खिंजीर पर तो अकद मुसलमान नहीं कर सकता, तो शराब और खिंजीर पर मुसलमान कब्जा भी नहीं कर सकता, क्योंकि यह कब्जा भी किसके मुशाबे है, आकद के मुशाबे है, तो दोनों का एक ही हुक्म होगा। दलील समझ में आ गई। यह दूसरे लफ्जों में यूं कहो, दूसरे लफ्जों में यूं कहो जो आगे साहिब हिदाया जिन अल्फाज को इस्तेमाल करेंगे, साहिब हिदाया फरमाते हैं कि आकद की वजह से मबीए में मिल्कियत आ जाती है और कब्जे की वजह से यह मिल्कियत पक्की हो जाती है। भाई देखो यह कलम आपकी जेब पर था, आकद किया तो मैं मालिक बन गया, लेकिन मेरी मिल्कियत अभी पुख्ता नहीं, उसमें जोर और ताकीद नहीं, क्योंकि मैं अभी भी उसमें तसर्रुफ नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं कब्जा कर लूंगा तो मेरी मिल्कियत में ताकीद आ गई, जोर आ गया, अब मैं कामिल मालिक बन गया इस चीज का, अब मैं इसको बेचना चाहूं तो बेच भी सकता हूं। तो मालूम हुआ कब्जे की वजह से मिल्कियत में ताकीद आती है, तो मालूम हुआ कब्जा किसके मुशाबे हुआ, आकद के मुशाबे हो गया, तो लिहाजा दोनों का एक ही हुक्म होगा, जब मुसलमान के लिए शराब और खिंजीर पर आकद नहीं जायज, तो मुसलमान के लिए शराब और खिंजीर पर कब्जा भी नहीं जायज होगा। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं देखिए भाई, किताब पर वजहु कौलिहिमा, साहिबैन के कौल की वजह यह है कि अन्नल कब्जा, भाई देखिए साहिबैन का कौल तो अलग अलग है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं दोनों सूरतों में महरे मिसल आएगा, चाहे शराब और खिंजीर मुअय्यन हो चाहे गैर मुअय्यन हो, जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं दोनों सूरतों में कीमत आएगी, चाहे वो शराब और खिंजीर मुअय्यन हो चाहे गैर मुअय्यन। तो दोनों के कौल अलग अलग हैं, तो फिर साहिब हिदायत इनकी दलील इकट्ठी कैसे जिक्र फरमा रहे हैं? तो वजह ये कि इस बात के अंदर तो दोनों का इत्तेफाक है कि मुअय्यन और गैर मुअय्यन का एक ही हुक्म होगा, शराब और खिंजीर मुअय्यन हो या गैर मुअय्यन, दोनों का हुक्म एक होगा। तो बई एतबार दोनों में इत्तेफाक है, तो इस एतबार से दोनों की इकट्ठी दलील जिक्र करेंगे, और फिर आगे एक के नजदीक महरे मिसल आता है और एक के नजदीक कीमत आती है, वो भी बयान करेंगे भाई। तो कहते हैं वजह कौली मां, साहिबैन के कौल की वजह यह है कि अन्नल कब्जा मुअक्किदुन लिल मिल्की फिल मकबूजी, कि कब्जा जो है वो मिल्कियत को पक्का करता है, मिल्कियत में ताकीद पैदा करता है, फिल मकबूजी वो चीज जिस पर कब्जा किया गया, वो जो मकबूज है उसके अंदर मिल्कियत में ताकीद आ जाती है कब्जे से भाई। फयकूनु लहू शबहुम बिल अक्दी, तो यहां ये लफ्ज शिबहुन न पढ़ना भाई, शबहुन है, शिबहुन का माना मिसलुन और शबहुन मस्तर है बमाने मुशाबहत के भाई। तो फयकूनु लहू शबहुम बिल अक्दी, तो इस कब्जे की मुशाबहत है बिल अक्दी अकद के साथ। फयमतनिउ बिसबबिल इस्लामी, तो ये कब्जा भी मुमतनिउ होगा इस्लाम की वजह से, कल अक्दी जैसे कि अकद है, जैसे शराब और खिंजीर पर आकद इस्लाम की वजह से मुमतने है, तो इन पर कब्जा भी इस्लाम की वजह से मुमतने होगा। तो कहते हैं फयम तनियो भी सबबिल इस्लामी कल आकदी, तो ये कब्जा भी इस्लाम की वजह से मुमतने होगा कल आकदी, जैसे कि इन पर आकद जो है वो मुमतने है। वसार कमा इदा काना भी गैर आयानी ही मां, और ये इसी तरह हो गए जैसे कि ये गैर मुअय्यन हो। भाई इधर देखिए, मुअय्यन चीज के अंदर अकद होते ही मिल्कियत आ जाती है। आपकी जेब पर कलम लगा हुआ था, मैंने जैसे ही इजाब और कबूल किया, अकद करते ही उस कलम में मेरी मिल्कियत आ गई, मुश्तरी उसका मालिक बन गया। हां मैं अभी तसरुफ तो नहीं कर सकता लेकिन मैं मालिक बन गया हूं। लेकिन अगर कोई चीज गैर मुअय्यन हो और उस पर अकद किया जाए, तो याद रखो गैर मुअय्यन के अंदर जब कब्जा करेगा, मिलके ऐन भी उसी वक्त आएगी और मिलके तसर्रुफ भी उसी वक्त आएगी। तवज्जो है, मसलन औरत से निकाह किया इस शख्स ने और गैर मुअय्यन शराब महर के तौर पर मुकरर की कि मैं तुम्हें एक मन शराब दूंगा। देखो अब ये शराब मुतय्यन नहीं, वो जो शराब मुतय्यन थी वो तो अक़्द निकाह करते ही औरत उसकी मालिक बन गई थी, लेकिन जो शराब गैर मुअय्यन है औरत उसकी मालिक नहीं, क्योंकि वो मौजूद ही नहीं है, तो मालिक कैसे बनेगी औरत उसकी। तो खावन जब भी वो गैर मुअय्यन शराब लाएगा और लाकर औरत के हवाले करेगा, तो जिस वक्त औरत कब्जा करेगी उसी वक्त उसको मिलके ऐन भी हासिल होगी और मिलके तसर्रुफ भी हासिल होगी। तवज्जो है, तो मालूम हुआ मुअय्यन चीज के अंदर मिलके ऐन कब हासिल होती है, जब अकद कर ले। तवज्जो है, मुअय्यन चीज के अंदर मिलके ऐन कब आएगी, जब अकद कर ले, और मिलके तसर्रुफ कब आएगी, जब कब्जा कर लेगा। जबकि गैर मुअय्यन के अंदर ये दोनों चीजें कब्जे के वक्त आएंगी, गैर मुअय्यन शराब जब खावंद लाकर इस औरत को देगा, ये जो जिम्मिया है, अभी दोनों मुसलमान नहीं हुए, खावंद ने वही शराब लाकर इस औरत को दी, तो जिस वक्त औरत कब्जा करेगी उसी वक्त मिलके ऐन भी आएगी, उसी वक्त मिलके तसर्रुफ भी आएगी, क्योंकि उससे पहले वो मुतय्यन ही नहीं है। खावंद एक मन शराब ले भी आए फिर भी मुतय्यन नहीं, हो सकता है खावंद ये वली भी ना दे, फिर कोई और लाकर औरत को दे दे। तवज्जो है, तो जब तक वो देगा नहीं वो मुतय्यन नहीं, जब मुतय्यन नहीं तो उसमें मिल्कियत आ ही नहीं सकती। हां जब औरत कब्जा करेगी तो मिलके ऐन भी आएगी और मिलके तसर्रुफ भी आएगी। फिर दोहरा लें यह जाब्ता, मुअय्यन चीज के अंदर जब आकद किया जाए तो आकद करते ही मिलके ऐन आ जाती है, और जब कब्जा कर लेंगे फिर मिलके तसर्रुफ आ जाएगी, जबकि गैर मुअय्यन के अंदर जब कब्जा किया जाएगा मिलके ऐन भी उस वक्त आएगी और मिलके तसर्रुफ भी उस वक्त आएगी। तो मालूम हुआ गैर मुअय्यन शराब या खिंजीर जब औरत को खावंद देगा, तो जब औरत कब्जा करेगी तो उसी वक्त मिलके ऐन भी आएगी और मिलके तसर्रुफ भी। मालूम हुआ मियां बीवी दोनों मुसलमान हो जाएं या दोनों में से कोई एक मुसलमान हो जाए, तो वो गैर मुअय्यन शराब या खिंजीर अब बीवी को बतौर महर के नहीं दिए जा सकते, क्योंकि बीवी पर उनके लिए कब्जा जायज नहीं, क्योंकि कब्जा करते ही वो क्या बन जाएगी, मालिक बन जाएगी। तो साहिबैन फरमाते हैं जैसे गैर मुअय्यन पर बीवी के लिए कब्जा जायज नहीं था, मुअय्यन के अंदर भी बीवी के लिए कब्जा जायज नहीं है, तो दोनों एक दूसरे जैसे हो गए, दोनों का एक ही हुक्म होगा। बात समझ में आई, फिर समझ लें हासिल कलाम। यहां तक साहिबैन की जो दलील हुई उसका हासिल यह है, वो बतलाना यह चाहते हैं कि मुअय्यन शराब या खिंजीर हो या गैर मुअय्यन शराब या खिंजीर हो, दोनों का एक ही हुक्म है। मुअय्यन शराब या खिंजीर है वहां पर आकद करते ही मिलके ऐन आ गई, आकद जैसे ही किया औरत की उनमें क्या आ गई, मिलके ऐन, औरत उनकी जात की मालिक बन गई। लेकिन मिलके तसर्रुफ कब आती है, जब कब्जा कर लेगी। तो मालूम हुआ कब्जे की मुशाबहत किसके साथ, आकद के साथ, किसके साथ, आकद। और मुसलमान के लिए जैसे शराब या खिंजीर पर आकद जायज नहीं, इसी तरह मुसलमान के लिए शराब या खिंजीर पर कब्जा भी जायज नहीं, क्योंकि कब्जे की मुशाबहत किसके साथ है, आकद के साथ है। और गैर मुअय्यन के अंदर तो जब औरत कब्जा करेगी उसी वक्त मालिक बनेगी, तो जैसे गैर मुअय्यन के अंदर औरत के लिए कब्जा जायज नहीं, इसी तरह मुअय्यन के अंदर भी औरत के लिए कब्जा जायज नहीं, क्योंकि इस कब्जे की मुशाबहत आकद के साथ है। भाई मालूम है दोनों के अंदर औरत कब्जा नहीं कर सकती, तो दोनों एक जैसे हो गए, दोनों का एक ही हुक्म है, चाहे मुअय्यन शराब या खिंजीर हो, चाहे गैर मुअय्यन शराब या खिंजीर हो। मसला समझ में आ गया। फिर देखिए भाई कहते हैं वजह कौली ही मां, साहिबैन के कौल की वजह यह है कि अनल कब्जा मुअक्किदुन लिल मिल्क फिल मकबूजी, कि कब्जा जो है मिल्कियत को पक्का करता है मकबूज के अंदर, फयकूनु लहू शबहुम बिल अक्दी, तो इस कब्जे की मुशाबहत हो गई अकद के साथ, फयम तनियो भी सब अबिल इस्लामी कल आकदी, तो यह कब्जा भी मुमतने होगा इस्लाम की वजह से जैसे कि आकद मुमतने होता है। व सारा कमा इदा काना बिगैरी आयानी ही मा, और ये दोनों मुअय्यन शराब और खिंजीर इसी तरह हो गए जैसे कि ये दोनों गैर मुअय्यन हो, जैसे गैर मुअय्यन में कब्जा जायज नहीं होता, इसी तरह हमने साबित कर दिया कि मुअय्यन में भी कब्जा जायज नहीं है, तो दोनों एक जैसे हो गए। व इदल तहकत हालतुल कब्ज बी हालतिल आकदी, और जब मिल गई कब्जे की हालत आकद की हालत के साथ, यानी जब दोनों का एक ही हुक्म हो गया, जैसे शराब और खिंजीर पर आकद नहीं जायज मुसलमान के लिए, इसी तरह मुसलमान के लिए इन पर कब्जा भी जायज नहीं है। तो कहते हैं वह ईदल तहकत हालतुल कब्ज भी हालत आकदी, और जब कब्जे की हालत मिल गई आकद की हालत के साथ, यानी दोनों का एक ही हुक्म हो गया। फअबू यूसुफ रहमहुल्ला यकूलु, तो इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला फरमाते हैं, लौकाना मुस्लिमैन वक्तल आकदी, अगर ये दोनों मुसलमान होते आकद के वक्त, ये दोनों मुसलमान होते आकद के वक्त, और इन्होंने आकद किया चाहे मुअय्यन शराब पे आकद करते चाहे गैर मुअय्यन पर आकद करते, दोनों सूरतों में महरे मिसल ने आना था, तो यहां भी दोनों सूरतों में महरे मिसल ही आएगा। इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं इतना तो हमने साबित कर दिया कि शराब या खिंजीर मुअय्यन हो या गैर मुअय्यन, दोनों का एक ही हुक्म है, दोनों पर कब्जा नहीं किया जा सकता, दोनों पर कब्जा नहीं किया, तो दोनों का एक हुक्म है। जब दोनों का एक हुक्म है, तो अगर ये मर्द और औरत जिन्होंने जिम्मी होने की हालत में निकाह किया था और शराब या खिंजीर को मुकरर किया था, अगर ये इस्लाम की हालत में आकद करते और शराब या खिंजीर पर आकद करते, चाहे वो मुअय्यन होती चाहे गैर मुअय्यन होती, दोनों सूरतों में महरे मिसल ने आना था, तो यहां भी दोनों सूरतों में महरे मिसल आएगा, चाहे शराब या खिंजीर मुआयन हो चाहे गैर मुआयन हो। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं फाबू यूसुफ रहमहुल्लाहु यकूलु, तो इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह फरमाते हैं लौकाना मुस्लिमैन वक्त अल अक्दी, अगर ये दोनों मुसलमान होते अकद करते वक्त यानी अकदे निकाह करते वक्त, यजिबु महरुल मिसली, तो उस वक्त महरे मिसल वाजिब होता, फकदा हा हुना, तो इसी तरह यहां भी होगा, जब अकद के वक्त मुसलमान हो तो महरे मिसल आता है, तो कब्जे के वक्त भी अगर ये मुसलमान है या दोनों में से एक मुसलमान है तो महरे मिसल ही आएगा, क्योंकि जैसे आकद जायज नहीं था कब्जा भी जायज नहीं है भाई। वह मोहम्मद उन रहमहुल्लाहु ताला यकूल, और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं सहती तस्मियतु लिकौनिल मुसम्मा मालन इंदहुम, इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इन्होंने निकाह किया जिम्मी होने की हालत में, और जिम्मियों के नजदीक तो खिंजीर भी माल है और शराब भी माल है, लिहाजा मुसम्मा तो सही है, इनके नजदीक यही महर बन गया ये जो शराब और खिंजीर जिक्र किए, लेकिन अब दोनों मुसलमान हो गए हैं, ये दोनों में से एक मुसलमान हो गया है, और खमर और खिंजीर के अंदर तो न तमल्लुक जायज है और ना तमलीक जायज है, और इसी तरह कब्जा भी जायज नहीं है, तो फिर जब एक ऐसी चीज को महर मुकरर किया जाए कि खावन जिसके देने से आजीज आ जाए तो फिर वहां उसकी कीमत आया करती है। मसलन एक शख्स ने एक औरत से निकाह किया और कहा ये जो सामने गुलाम है ये मैं तुम्हें बतौर महर के दूंगा, और दोनों ने निकाह कर लिया, खावन ने अभी महर उसके हवाले नहीं किया था कि उससे पहले ही गुलाम का इंतकाल हो गया, तो अब खावंद उस गुलाम के सुपुर्द करने से आजिज आ गया, और इस सूरत में बिल इत्तेफाक खावंद पर उसकी कीमत वाजिब होगी, उसकी कीमत देना पड़ेगी। तो मालूम हुआ कि जब किसी चीज को महर मुकरर किया जाए और खावंद उसकी अदायगी से आजिज आ जाए तो वहां उसकी कीमत आया करती है। तो यहां पर भी शराब और खिंजीर पर इन्होंने अक़्द निकाह किया था और हालत कुफर में किया था, तो मालूम हुआ यही शराब या खिंजीर महर बन गए भाई, लेकिन अब या दोनों मुसलमान हैं या दोनों में से एक मुसलमान है, अब खावन ये अदा नहीं कर सकता, इसके अदा करने से वो आजिज आ गया है तो अब इनकी कीमत देना पड़ेगी। तो कहते हैं वह मोहम्मद उन रहमहुल्लाहु ताला यकूलु, और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं सहती तस्मियतु के तस्मिया यानी महर का मुकर्रर करना सही है लिकौनिल मुसम्मा मालन इंदहुम, इसलिए क्योंकि मुसम्मा यानी ये शराब और खिंजीर इनके नजदीक माल है, इल्ला अन्नहुम तनअत तस्लीमुल इस्लामी, मगर ये कि मुमतने हो गया सुपुर्द करना इस्लाम की वजह से, इस्लाम की वजह से अदायगी मुमतने हो गई, फतजिबुल कीमतु, तो उसकी कीमत वाजिब होगी, कमा इदा हलकल अब्दुल मुसम्मा कबल अल कब्जी, जैसे कि मुकर्ररा गुलाम हलाक हो जाए कब्जे से पहले तो वहां जैसे उसकी कीमत आती है। वली अबी हनीफा रहिमहुल्लाह, और इमाम साहेब की दलील यह है भाई, इधर देखिए जाब्ता आपको मैंने बतलाया था कि बया करते ही मुश्तरी मबीए का मालिक बन जाता है, तो मिलके आयन तो उसको हासिल हो गई लेकिन मिलके तसर्रुफ अभी हासिल नहीं, जब कब्जा करेगा तब मिलके तसर्रुफ हासिल होगी, ये किसमें है मबीए में, किसमें है मबीए में। इमाम साहब फरमाते हैं कि निकाह का हाल बया से मुख्तलिफ है, मबीए के अंदर आकद करने से सिर्फ मिलके ऐन आती है, मिलके तसर्रुफ नहीं, जबकि निकाह के अंदर अकदे निकाह करते ही मुअय्यन शराब और खिंजीर जो हैं उनमें मिलके ऐन भी आ जाती है और मिलके तसर्रुफ भी आ जाता है, निकाह करते ही मिलके ऐन भी, मिलके ऐन तो साहिबैन भी मानते थे भाई, बैग के अंदर भी इसी तरह है, लेकिन इमाम साहब फरमाते हैं निकाह का मामला मुख्तलिफ है, निकाह के अंदर अक़्द निकाह करते ही वो जो मुअय्यन शराब और खिंजीर हैं उनके अंदर मिलके ऐन भी आ गई और मिलके तसर्रुफ भी आ गई, बीवी कब्जे के बगैर ही इनमें कोई तसर्रुफ करना चाहे तो तसर्रुफ कर सकती है, इनको आगे बेच सकती है, बात समझ में आ गई। तो जब निकाह से पहले ही मिलके तसर्रुफ भी आ चुकी है, अब अगर दोनों मुसलमान हो गए, अब खावंद बीवी के हवाले करता है यही शराब या खिंजीर, तो मुझे बताइए क्या कब्जे की वजह से कोई ऐसी चीज आई जो पहले नहीं थी? यानी मिलके तसर्रुफ तो पहले से ही बीवी को हासिल था, मालूम हुआ यहां कब्जे की वजह से भी कोई नई चीज नहीं आई। तो यहां कब्जे की मुशाबहत आकद के साथ नहीं है भाई, जब कब्जे की मुशाबहत आकद के साथ नहीं है तो मुसलमान इन पर कब्जा कर सकता है भाई। साहिबैन ने तो कहा था कि कब्जे की वजह से मिलके तसर्रुफ आता है, तो ये मुशाबे हो गया किसके साथ? आकद के साथ, जिसकी वजह से मिलके ऐन आता है। लेकिन यहां तो पहले से मिलके ऐन भी आ चुकी है और मिलके तसर्रुफ भी, यहां सिर्फ एक कब्जे से चीज निकलकर दूसरे कब्जे में जा रही है, तो सिर्फ इखावन के कब्जे से एक चीज निकलकर बीवी के कब्जे में जा रही है, और इसकी तो इस्लाम में कोई मुमानाहत नहीं है। मिल्कियत भी बीवी के लिए इस्लाम से पहले साबित हो चुकी और तसर्रुफ का हक भी बीवी के लिए इस्लाम से पहले ही साबित हो चुका है। बात समझ में आ गई। वली अबी हनीफा रहिमहुल्लाह और इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नल मिल्क फी सदाक मुअय्यनी, सदाक महर को कहते हैं भाई, कि अन्नल मिल्क फी सदाक मुअय्यनी के मुअय्यन महर के अंदर मिल्कियत जो है, यतिम्मु बिनफ्सिल अक्दी, वो नफ्से अक्द से ही पूरी हो जाती है। बैअ के अंदर मिल्कियत नफ्से अक्द से पूरी नहीं बल्कि कब्जे से मिल्कियत पूरी होती है। मैंने आपसे कलम खरीदा तो अकद करते ही मैं कलम का मालिक तो बना, लेकिन तसर्रुफ अभी भी नहीं कर सकता। तसर्रुफ कब कर सकूंगा? जब कब्जा कर लूंगा। तो मालूम हुआ बेअ के अंदर मिल्कियत ताम होगी कब्जे से, जबकि महर के अंदर अकद करते ही मिल्कियत ताम हो गई, बीबी मालिक भी बन गई और साहिबे तसर्रुफ भी बन गई भाई। तो कहते हैं वली अबी हनीफा रहमतुल्लाह और इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नल मिल्क फी सदाक मुअय्यन यतिम्मु बिनफ्सिल अक्द, के मुअय्यन महर के अंदर जो मिल्कियत होती है वो नफ्से अक्द से ही ताम हो जाती है, नफ्से अक्द से ही पूरी हो जाती है। वलिहादा तमलिकु तसर्रुफ फीही, और इसीलिए औरत उसमें तसर्रुफ की भी मालिक होती है। व बिल कब्ज यंतकिलु मिन ज़मान ज़ौज इला ज़मानिहा, और कब्जे की वजह से वो चीज मुंतकिल होती है खावंद के जमान से औरत के जमान की तरफ। जमान कहते हैं हिफाजत और जिम्मेदारी। भाई देखो फर्क सिर्फ इतना है कि वो जो मुअय्यन शराब और खिंजीर हैं, औरत पहले ही से इनकी मालिकन भी बन चुकी है और उसको तसर्रुफ का हक भी मिल चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि अभी तक खावंद ने औरत के हवाले नहीं किए, तो ये अभी भी खावंद की हिफाजत में है, लिहाजा अगर यह जाया हो गई तो फिर खावंद को इनका बदल देना पड़ेगा, इनका बदल। तो ये सिर्फ खावंद की हिफाजत में है, और हलाक में तो खावंद को जमान देना पड़ेगा। तो जब खावंद औरत के हवाले करेगा तो सिर्फ खावंद के जमान से वो चीजें निकलकर औरत के जमान में चली गईं। अब यानी औरत के जमान में आने के बाद अगर ये चीजें हलाक हुई तो अब वो खावंद से किसी चीज का मुतालबा नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी अपनी हिफाजत से वो चीजें जाया हुई हैं। मालूम हो औरत मालिक भी पहले से है, साहिब तसर्रु भी पहले से है, सिर्फ कब्जा खावंद का था और उस कब्जे से वो चीज मुंतकिल होगी, और इसकी तो इस्लाम में मुमानअत नहीं है भाई। तो कहते हैं वह बिल कब्ज यंतकिलु मिन ज़मानी ज़ौजी इला ज़मानिहा, और कब्जे की वजह से वह चीज मुंतकिल हो जाएगी खावंद के जमान से औरत के जमान की तरफ। वज़ालिका ला यम्तनिउ बिल इस्लामी, और यह मुंतकिल होना एक कब्जे से दूसरे कब्जे की तरफ यह तो इस्लाम की वजह से मुमतनिउ नहीं है। कस्तिरदाद अल खम्र अल मग़सूबी, इस्तिरदाद का माना है वापस लेना, वापसी का मुतालबा करना, और मगसूब जिसको गसब किया गया है। सूरत मसला यह, एक शख्स जिम्मी है, गैर मुस्लिम है, और उसके पास शराब मौजूद है, किसी ने इसकी ये शराब गसब कर ली, तवज्जो है, या इसके पास खिंजीर मौजूद थे और किसने वो खिंजीर गसब कर लिए यानी छीन कर ले गया, तो अब गासिब पर लाजिम होता है कि वो चीज वापस करे। तो यह शख्स, इसने अभी वो चीजें वापस नहीं ली थी कि यह मुसलमान हो गया, तो मुसलमान होने के बावजूद इसका हक है ये उससे वो शराब या खिंजीर वापस ले सकता है, क्योंकि ये अभी भी मालिक है। भाई कोई शख्स किसी की चीज छीन कर ले जाए तो इससे किसी की मिल्कियत खत्म नहीं होती, वो शख्स अभी भी मालिक है। तो ये शख्स जिम्मी अगरचे मुसलमान हो गया है लेकिन उस शराब या खिंजीर का अभी भी यही मालिक है, ये कोई नया मालिक नहीं बना, पहले से यही मालिक है। तवज्जो है, तो लिहाजा ये उससे शराब और खिंजीर वापस ले सकता है। अब वापस लेने का क्या फायदा होगा, उसके कब्जे से चीज निकलेगी और इसके कब्जे में आ जाएगी और इस्लाम इससे मना नहीं करता, इसीलिए तो इसको वापस लेने का हक है। अगर इस्लाम इस कब्जे के इंतकाल से भी रोकता तो फिर इसको तो वापस लेने का हक ही ना होता, हालांकि बिल इत्तेफाक इसको ये शराब या खिंजीर वापस लेने का हक है। मालूम हुआ एक कब्जे से दूसरे कब्जे की तरफ शराब या खिंजीर का मुंतकिल होना यह इस्लाम में मुमतनिया नहीं है। भाई तो कहते हैं वदाली का लायम तनियाउ बिल इस्लामी, और ये एक कब्जे से दूसरे कब्जे की तरह मुंतकिल होना यह तो इस्लाम में मुमतनिया नहीं है। कस्तिरदाद इल खम्र इल मगसूबी, जैसे कि गसब शुदा शराब को वापस लेना। वफी गैर इल मुअय्यन अल क़ब्ज़ु मूजिबुन मिल्क अल ऐन फयमतनिउ बिल इस्लाम। हां, गैर मुअय्यन में मैंने आपको बतलाया था, इमाम साहब क्या फरमाते थे कि मुअय्यन शराब या खिंजीर हैं तो यही औरत को मिलेंगे, खावन या बीवी चाहे दोनों मुसलमान हो गए चाहे दोनों में से एक मुसलमान हो गया, यही मुअय्यन शराब या खिंजीर मिलेंगे, क्योंकि अकद के वक्त ही औरत इनकी मालिक भी बन गई थी और उसको तसरुफ का हक भी मिल चुका था। भाई सिर्फ अब खावन के कब्जे से चीज निकलेगी और औरत के कब्जे में चली जाएगी। और जबकि गैर मुअय्यन शराब और खिंजीर, उसमें इमाम साहब फरमाते थे कि शराब में कीमत देना पड़ेगी और खिंजीर में महर मिसल आएगा। अब उसकी दलील जिक्र करने लगे हैं, कहते हैं भाई गैर मुअय्यन शराब या खिंजीर जो है, गैर मुअय्यन शराब या खिंजीर जो है उसमें जब औरत उन पर कब्जा करेगी तो उसी वक्त वो मालिकन भी बनेगी। तो अगर दोनों मुसलमान हो चुके हैं या दोनों में से कोई एक मुसलमान हो चुका है तो उस सूरत में तमल्लुक या तमलीक लाजिम आएगा। औरत मुसलमान हुई है तो तमल्लुक खमर या खिंजीर लाजिम आएगा, क्योंकि जिस वक्त कब्जा करेगी उसी वक्त वो मालिकन भी बनेगी। और अगर खावंद मुसलमान हुआ है तो उसी वक्त गोया खावंद उसको मालिक बना रहा है जब औरत कब्जा कर रही है, तो इस वजह से वहां पर कब्जा मुमतनिया है। गैर मुअय्यन शराब या खिंजीर को महर मुकरर किया था और अब खावंद वो नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि उसी वक्त तमल्लुक या तमलीक लाजिम आएगा और यह तो मुसलमान के लिए जायज नहीं है। भाई तो जब वो नहीं दे सकते तो फिर शराब में कीमत देंगे और खिंजीर में महरे मिसल देंगे। तो कहते हैं वफी गैर इल मुअय्यनी, और गैर मुअय्यन शराब और खिंजीर के अंदर अल कब्ज़ु मूजिबुन मिल्क अल ऐनी, कब्जा जो है मूजिबुन ऐ मुस्बितुन, कब्जा जो है साबित करने वाला है मिल्क अल ऐनी, मिल्क ऐन को भी। गैर मुअय्यन के अंदर तो कब्जा करो तभी मिल्क ऐन भी हासिल होती है, तो गैर मुअय्यन के अंदर कब्जा जो है मूजिबुन मिल्कल आइनी, वो मिलके आइन को साबित करने वाला है। फयम तनियो बिल इस्लामी, तो ये कब्जा मुमतने होगा इस्लाम की वजह से। बेखिलाफिल मुश्तरा, ये इसको मुश्तरा पढ़ें भाई, इसमें मफूल बखिलाफ मुश्तरा के, यानी वो चीज जिसको खरीदा गया है। भाई इधर देखिए, खरीदी हुई चीज में आकद की वजह से यानी आकदे ब्या की वजह से सिर्फ मिलके आइन आती है और कब्जे की वजह से मिलके तसर्रुफ आती है। तो मुश्तरा और महरे मुअय्यन में फर्क आ गया, महरे मुअय्यन में मिल्कियत भी आ गई और तसर्रुफ भी आ गया, लेकिन मुश्तरा जो चीज खरीदी है उसके अंदर आकद की वजह से मिलके ऐन तो आई है लेकिन अभी तक जब तक कब्जा नहीं किया मिलके तसर्रुफ नहीं है। वही बयान कर रहे हैं, कहते हैं बेखिलाफ इल मुश्तरा, बखिलाफ उस चीज के जिसको खरीदा गया है। लिअन्न मिल्क तसर्रुफी इन्नमा युस्तफादु बिल कब्जी, कि इसलिए क्योंकि मिलके तसर्रुफ जो है वो हासिल होगी बिल कब्जी, कब्जे से मिलके तसर्रुफ आएगी। व इदा तअज़्ज़र अल क़ब्ज़ु फी गैर अल मुअय्यन, और जब गैर मुअय्यन के अंदर कब्जा मुतअज़्ज़र हो गया, गैर मुअय्यन पर कब्जा नहीं कर सकते वरना क्या खराबी लाजिम आएगी, तमल्लुक या तमलीक की खराबी लाजिम आएगी। तो कहते हैं वह इदा ताजर अल कब्जु फी गैर अल मुअय्यन, और गैर मुअय्यन शराब या खिंजीर के अंदर जब कब्जा मुताजिर हो गया, कब्जा मुमकिन न रहा, ला तजिबुल कीमत फिल खिंजीर, तो खिंजीर के अंदर कीमत वाजिब नहीं होगी, लिअन्नहु मिन ज़वातिल क़ियमी, इसलिए क्योंकि खिंजीर किस में से है, ज़वातुल क़ियम में से। मैंने बताया था ज़वातुल क़ियम के अंदर कीमत ही देते हैं और कीमत देना ऐन शय देने की तरह है। तो अगर गैर मुअय्यन खिंजीर में हम कहें कि खावंद को कीमत देना पड़ेगी तो यह तो गोया इसी तरह है, गोया वो ऐन खिंजीर ही दे रहा है जी। फिर तर्जमा देखिए, वह इदा ताजर अल कब्ज फी गैर मुअय्यन, और जब गैर मुअय्यन के अंदर कब्जा मुमकिन ना रहा, तो ला तजिबुल कीमत फिल खिंजीरी, तो खिंजीर के अंदर उसकी कीमत वाजिब नहीं होगी, लिअन्नहु मिन ज़वातिल क़ियमी, इसलिए क्योंकि खिंजीर जो है ज़वातुल क़ियम में से है, फयकूनु अख्ज़ु क़ीमतिही का अख्ज़ ऐनिही, तो खिंजीर की कीमत का लेना ऐसे ही होगा जैसे कि ऐन खिंजीर का लेना। वला कदालिकल खमरु, लेकिन शराब ऐसी नहीं है, लिअन्नहा मिन ज़वातिल अमसाल, इसलिए क्योंकि शराब जो है वो तो ज़वातुल अमसाल में से है, मिसलियात में से है, और मिसलियात के अंदर मिसल दिया जाता है, लेकिन शराब का मिसल तो शराब ही बनेगी और शराब तो हम दे नहीं सकते, तो फिर वहां पर कीमत देना पड़ेगी, और मिसलियात में मिसल आता है, कीमत नहीं आती। जब कीमत दे रहे हैं तो गोया आप शराब का बदल कोई और चीज दे रहे हैं, शराब नहीं दे रहे। ज़वातुल क़ियम में कीमत दें तो गोया आप वही चीज दे रहे हैं, लेकिन मिसलियात में अगर आप कीमत देंगे तो वही चीज नहीं है भाई। तो कहते हैं वला कदालिकल खमरु, और शराब ऐसी नहीं है, लिअन्नहा मिन ज़वातिल अमसाल, इसलिए क्योंकि शराब जो है वो मिसलियात में से है। अला तरा अन्नहु लौ जाअ बिल क़ीमति क़ब्ल अल इस्लाम तुजबरु अलल क़बूल फिल खिंज़ीर दून अल खमरी। भाई साहिब हिदाया इमाम साहिब की ताइद में मसला जिक्र फरमा रहे हैं। ज़ाब्ता याद रखो, ज़ाब्ता यह है कि जब किसी शख्स को उसका ऐन हक अदा किया जाए तो वो उसके लेने से इनकार नहीं कर सकता। अगर वो इनकार करेगा तो काजी उसको जबरन वो चीज लेने पर मजबूर कर देगा। चुनांचे साहिब हिदाया फरमाते हैं, अगर इस्लाम लाने से पहले ही ये खावंद गैर मुअय्यन खिंजीर की कीमत देना चाहता बीवी को, खिंजीरों पर निकाह किया है और मसलन 10 खिंजीर हैं और वह गैर मुअय्यन है, और खिंजीर किस में से, ज़वातुल क़ियम में से है, और ज़वातुल क़ियम के अंदर कीमत देना गोया ऐन शय को देना है। अब सूरत यह हुई कि अभी दोनों मुसलमान नहीं हुए, गैर मुअय्यन खिंजीरों पर निकाह हुआ है, अब खावंद उन खिंजीरों की कीमत लाकर बीवी को देता है, बीवी कहती है नहीं नहीं मैं पैसे नहीं लूंगी, मुझे तो खिंजीर ही चाहिए, तो काजी मजबूर कर सकता है औरत को कि नहीं तुम्हें यह कीमत ही लेना पड़ेगी। और काजी तो किसी को उसी वक्त मजबूर कर सकता है जब वो उसका ऐन हक हो, बदल के लेने पर काजी मजबूर नहीं कर सकता भाई, ऐन हक लेने पर काजी मजबूर कर सकता है। और इस मसले के अंदर खावंद कीमत दे रहा हो, बीवी इनकार कर रही हो, तो काजी उस औरत को मजबूर कर सकता है कि तुम्हें यह कीमत ही लेना पड़ेगी। मालूम हुआ ज़वातुल क़ियम में कीमत देना ऐन उस शय ही का देना है, इसीलिए तो काजी उसको मजबूर कर सकता है। अगर ये उसका बदल होता तो काजी उसको मजबूर नहीं कर सकता था भाई। तो कहते हैं अल्लाह तारा, क्या आप देखते नहीं, अन्नहु लौ जाअ बिल क़ीमति क़ब्ल अल इस्लामी, कि अगर वो खावन कीमत को ले आता इस्लाम लाने से पहले, तुजबरु अलल क़बूल फिल खिंजीरी, तो औरत को मजबूर किया जाता कबूल करने पर खिंजीर की सूरत में, दून अल खमरी, ना के खमर की, खमर शराब की सूरत में अगर खावन कीमत लाता तो काजी औरत को मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि शराब मिसलियात में से है और मिसलियात में मिसल दिया जाता है, कीमत वो ऐन शय नहीं है बल्कि वो बदल है भाई, तो बदल पर काजी मजबूर नहीं कर सकता। वलौ तल्लक़हा क़ब्ल दुख़ूली बिहा, और अगर खावंद ने इस औरत को तलाक दे दी सोहबत करने से पहले, तवज्जो है, तो इन सूरतों में अगर औरत को खावन तलाक देता है कबल दुखूली बिहा उसके साथ सोहबत करने से पहले ही, फमन औ जब महरल मिसली औ जबल मुताता वमन औ जबल कीमत औ जबन इसफहा, तो जिन्होंने महरे मिसल को वाजिब करार दिया है वो कहते हैं कि मुतात तलाक देना पड़ेगा, यानी 3 कपड़े, क्योंकि जिस निकाह के अंदर महरे मिसल आता है वहां अगर सोहबत से पहले तलाक दे दी जाए तो खावन को क्या देना पड़ता है, मुता देना पड़ता है, तो यहां भी मुता ही देना पड़ेगा। और जिन्होंने कीमत वाजिब की थी, जिन्होंने कीमत वाजिब की थी उनके नजदीक निस्फ कीमत देना पड़ेगी, क्योंकि जब मुकर्रा महर में सोबत से पहले खावन तलाक दे तो निस्फ महर देना पड़ता है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वला तल्लका कबल दुखूली बिहा, और अगर खावन ने इस औरत के साथ सोहबत करने से पहले इसको तलाक दे दी, फमन औ जब महर अल मिसली, तो जिसने महरे मिसल को वाजिब किया है, इन अइमा में से जिसने महरे मिसल को वाजिब किया है, औ जबल मुताता, वो मुता वाजिब करते हैं, वमन औ जबल कीमता, और जिन्होंने कीमत को वाजिब किया है, औ जब निस्फहा, उन्होंने निस्फ कीमत को वाजिब किया है जब खावंद सोहबत से पहले तलाक दे। बाबू निकाह रकीक, रकीक गुलाम को कहते हैं भाई, मुफरत पर भी इसका इतलाक होता है और जमा पर भी इसका इतलाक होता है। बाबू निकाह रकीक, ये बाब है गुलामों के निकाह के बयान में। ला यजूजु निकाहुल अब्दि वल अमति इल्ला बिइज़्नि मौलाहुमा, गुलाम और बांदी का निकाह जायज नहीं है, इल्ला बिइज़्नी मौलाहुमा, मगर इन दोनों के आका की इजाजत से। याद रखो, गुलाम और बांदी का निकाह कोई और करवाए तो वो निकाह आका की इजाजत पर मौकूफ है, और अगर ये खुद करेंगे तो भी आका की इजाजत पर वो निकाह मौकूफ है। वकाल मालिक रहमहुल्लाहु यजूज़ु लिल अब्दि, और इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं गुलाम के लिए जायज है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं गुलाम अपनी मर्जी से जहां चाहे निकाह कर सकता है। यह इख्तिलाफ पहले भी गुजरा था, हमारे नजदीक आजाद आदमी चार निकाह कर सकता है बैक वक्त भाई, यानी चार औरतें ज्यादा से ज्यादा अपने निकाह में रख सकता है आजाद आदमी, जबकि गुलाम जो है ज्यादा से ज्यादा दो औरतों को एक वक्त में अपने निकाह में रख सकता है। और वहां पर भी इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने इख्तिलाफ किया था, वो फरमाते हैं जैसे आजाद आदमी चार निकाह कर सकता है, गुलाम भी चार निकाह कर सकता है। तो यहां पर भी वो इख्तिलाफ करते हैं, वो कहते हैं गुलाम अपनी मर्जी से निकाह कर सकता है, वो फरमाते हैं कि ये जो गुलाम को निकाह की इजाजत दी है शरीयत ने, ये आदमी होने की हैसियत से है जी। ये आदमी होने की हैसियत से शरीयत ने इसको इजाजत दी है निकाह की, क्योंकि गुलाम जो है वो भी एक इंसान है भाई। क्या है? गुलाम भी एक इंसान है, एक आदमी है, और आका जो गुलाम का मालिक होता है ये आदमी होने की हैसियत से इसका मालिक नहीं है, बल्कि इस हैसियत से इसका मालिक है कि ये माल है। गुलाम को क्या शुमार किया जाता है? माल। तो आका माल होने के एतबार से इसका मालिक है, और ये जो शरीयत ने इसको निकाह का हक दिया है ये आदमी होने के एतबार से दिया है, और आदमी होने के एतबार से तो आका इसका मालिक नहीं। जब इस हैसियत से आका इसका मालिक नहीं, तो आदमी है होने की हैसियत से जो जो इख्तियारात शरीयत ने दिए हैं वो गुलाम उनमें आजाद है भाई। तो लिहाजा गुलाम चार निकाह भी कर सकता है, और गुलाम जो है आका की इजाजत के बगैर भी निकाह कर सकता है भाई। तो कहते हैं वकाल मालिक रहमहुल्ला यजूज़ु लिल अब्दी, और इमाम मालिक रहमहुल्ला फरमाते हैं गुलाम के लिए जायज है। लिअन्नहु यमलिकु तलाक फयमलिकु निकाह, इसलिए क्योंकि गुलाम जो है वो तलाक का मालिक होता है तो वो निकाह का भी मालिक होगा। उनका जाबता है भाई कि जो तलाक का मालिक होता है वो निकाह का भी मालिक होता है, और बिल इतफाक है अहनाफ, आपके नजदीक भी गुलाम अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, वो तलाक का मालिक है। जब तलाक का मालिक है तो निकाह का भी मालिक होगा, क्योंकि तलाक किस चीज का नाम है? इजालाए निकाह का, निकाह को खत्म करना। जब निकाह का खत्म करना इसके इख्तियार में है तो वजूद निकाह भी इसके इख्तियार में होगा भाई। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं लिअन्नहु यमलिकु तलाक, इसलिए क्योंकि गुलाम तलाक का मालिक होता है, फयमलिकु निकाह, तो वो निकाह का भी मालिक होगा। और याद रखो ये इख्तिलाफ वो सिर्फ गुलाम में करते हैं, गुलाम अपनी मर्जी से निकाह कर सकता है, उसे आका से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं। अलबत्ता बांदी के अंदर वो भी फरमाते हैं, बांदी बिल इतफाक बांदी आका की इजाजत के बगैर निकाह नहीं कर सकती। वजह यह कि आका के लिए बांदी से सोहबत जायज होती है। मालूम हुआ बांदी के मनाफे का मालिक आका है, तो बांदी इन मुनाफे का मालिक किसी और को नहीं बना सकती आका की इजाजत के बगैर। आगे देखिए, वलना और हमारी दलील यह है, कौलहू अलैहि सलाम, हुजूर अलैहि सलाम का कौल है, आपने फरमाया अय्युमा अब्दिन तज़व्वज बिगैर इज़्नि मौलाहु फहुवा आहिरुन, अय्युमा अब्दिन तज़व्वज बिगैर इज़्नि मौलाहु, जिस गुलाम ने भी अपने आका की इजाजत के बगैर निकाह किया, फहुवा आहिरुन, तो वो जिना करने वाला है, वो जिनाकार है भाई। आहिर कहते हैं जिनाकार को, तो फहुआ आहिरुन, तो वो जिनाकार है। इससे मालूम हुआ गुलाम आका की इजाजत के बगैर निकाह नहीं कर सकता। वली अन नफी तनफीज निकाह ही मां, अब अकली दलील भी पेश कर रहे हैं साहिब हिदाया, नकली दलील भी जिक्र कर दी कि हदीस में आया है, और अब क्या अकल भी यही कहती है, कयास भी यही तकाजा करता है कि गुलाम को निकाह की इजाजत नहीं होनी चाहिए। वजह यह कि याद रखो कि जो गुलाम और बांदियां हैं इनके अंदर निकाह ऐब शुमार होता है, ताजिरों के यहां ये ऐब शुमार होता है, चुनांचे इसकी वजह से इनकी कीमत कम हो जाती है। तो ताजिरों के यहां गुलाम और बांदियों में निकाह ऐब शुमार होता है। तो कहते हैं वली अन नफी तनफीज निकाह ही मा तअय्यिबहुमा, वली अन नफी तनफीज निकाह ही मा, इसलिए कि उनके इन दोनों के निकाह को नाफिज करने में तअय्यिबहुमा, इन दोनों को ऐबदार बनाना है। अय्यब युअय्यिबु तअय्यिब का क्या माना, ऐबदार बनाना। तो वली अन नफी तनफीज निकाह ही मा, इसलिए क्योंकि इन दोनों के निकाह के नाफिज करने में तअय्यिबहुमा, इन दोनों को ऐबदार बनाना है। इदिन निकाह ऐबुन फीहिमा, इसलिए क्योंकि निकाह जो है इन दोनों में ऐब है, निकाह इनमें ऐब शुमार होता है। चुनांचे उलमा फरमाते हैं अगर एक शख्स ने गुलाम या बांदी को खरीद लिया और बाद में उसको पता चला कि यह तो शादी शुदा है, पहले उसको पता ही नहीं था, तो और गुलाम और बांदियों में तो ये निकाह ऐब शुमार होता है, और मुश्तरी जो है ऐब की वजह से मबीहा वापस कर सकता है। तो यहां पर भी ये जो मुश्तरी है ये इस ऐब की वजह से इस गुलाम या बांदी को वापस कर सकता है। ये माना है इदिन निकाह ऐब उन फी ही मा, इसलिए क्योंकि निकाह जो है इन दोनों में ऐब है। फला यमलिका नहीं बितूनी इज़्नी मौलाहुमा, लिहाजा ये दोनों इसके मालिक नहीं है आका की इजाजत के बगैर। गुलाम या बांदी के अंदर जो निकाह है ये ताजिरों के यहां ऐब शुमार होता है, इसकी वजह से इस गुलाम या बांदी की कीमत कम हो जाती है। लिहाजा गुलाम या बांदी को निकाह करने की यानी आका के माल में ऐब पैदा करने की इजाजत नहीं होगी भाई। आका की इजाजत के बगैर ये दोनों इस निकाह के मालिक नहीं है भाई। वकदालिकल मुकातब, और इसी तरह मुकातब भी है भाई। देखो एक आम गुलाम है, एक है मुकातब, एक है मुदब्बर, एक है उम्मे वलद। मुकातब वो गुलाम जिसे आका ने अक़्दे किताबत कर लिया हो। किताबत का माना लिखना नहीं है यहां, बल्कि किताबत उस अक़्द का नाम है। अक़्दे किताबत यह है कि आका अपने गुलाम से कहता है कि मसलन तुम दो साल के अंदर अगर 20 लाख रुपए मुझे अदा कर दो तो तुम मेरी तरफ से आजाद हो। गुलाम इस अक़्द को कबूल कर लेता है। तो ये जो आका और गुलाम के दरमियान अक़्द हुआ इसको अक़्दे किताबत कहते हैं। और याद रखो ये जो मुकातब होता है ये आजाद आदमी की तरह हो जाता है, यानी आका इससे जबरन खिदमत नहीं ले सकता। ये अब जाएगा, जाकर पैसे कमाएगा और अदायगी करके अपने आप को आजाद करवाएगा। तो आका इससे जबरन खिदमत नहीं ले सकता, ये खुद खिदमत करना चाहे वो इसकी मर्जी है, लेकिन ये अब आजाद आदमी की तरह हो चुका है अक़्दे किताबत के बाद। और नीज याद रखना ये जो मुकातब होता है आका इसको आगे बेच भी नहीं सकता। जब तक इन दोनों के दरमियान अक़्दे किताबत है आका इस गुलाम को आगे नहीं बेच सकता। वजह यह क्योंकि अब यह गुलाम अपनी आजादी के लिए कोशिश कर रहा है, और अगर किसी और को बेचेगा तो इस बेचारे गुलाम का हक आजादी जाया हो जाएगा। लिहाजा ये जब तक अक़्दे किताबत है आका उसको आगे नहीं बेच सकता। और फिर इसमें यह भी याद रखना मसलन दो साल में 20 लाख रुपए अदा करने हैं तो हर महीने गुलाम जो है मुकर्रा पैसे लाकर अदा करता रहेगा यहां तक कि 20 लाख पूरे हो जाएं। तो अगर गुलाम पैसों की अदायगी से आजिज आ गया, एक दो महीने वो किस्तें न दे सका तो आका काजी के पास जाकर मुकदमा कर सकता है और काजी फिर इन दोनों में अक़्दे किताबत को फसख करवा देगा कि मालूम हुआ गुलाम अदायगी नहीं कर सकता, लिहाजा अक़्दे किताबत फसख हो जाएगा और यह गुलाम फिर आम गुलाम की तरह बन जाएगा। या वो गुलाम खुद ही दो चार महीने उसने मेहनत की लेकिन पैसे नहीं बन रहे, वो खुद ही आका को आकर कहता है कि मैं आजिज आ गया, मुझसे ये पैसे नहीं हो सकते, तो इस सूरत में ये वो अक़्दे किताबत खत्म हो जाएगा और ये फिर आम गुलाम की तरह बन जाएगा और फिर आका के लिए इसको बेचना जायज हो जाएगा क्योंकि अब अक़्दे किताबत बाकी नहीं है भाई। तो यह है मुकातब। और एक होता है मुदब्बर भाई, मुदब्बर वो गुलाम है जिसे आका ने कह दिया कि मेरे मरने के बाद तू आजाद है। याद रखो आका की जुबान से जैसे ही ये अल्फाज अदा हुए अब आजादी इस गुलाम का हक बन गई, अब आका अपने ये अल्फाज वापस नहीं ले सकता और आजादी इस गुलाम का हक बन गया और आका के मरने के बाद इसने हर हाल में आजाद होना है, लिहाजा आका इसको आगे नहीं बेच सकता। इसी तरह उम्मे वलद भाई, उम्मे वलद वो बांदी है कि जिसने एक बच्चे को जन्म दिया और आका ने इकरार कर लिया कि ये मेरा बच्चा है, तो ये बांदी इस आका की उम्मे वलद बन गई। जब तक आका इकरार नहीं करेगा उस बच्चे का तब तक ये उम्मे वलद नहीं, लेकिन जब आका इकरार कर लेगा अब ये इस आका के बच्चे की मां बन गई, उम्मे वलद बन गई और आजादी इसका भी हक बन गया। आका के मरने के बाद अब ये औरत भी आजाद हो जाएगी भाई। भाई बतला दिया इन्होंने ऊपर कि गुलाम और बांदी अपने आका की इजाजत के बगैर निकाह नहीं कर सकते, तो अब आगे बताएंगे मुकातब का क्या हुक्म है, मुदब्बर का क्या हुक्म है, उम्मे वलद का क्या हुक्म है, हर एक की तफसील बयान करेंगे। कहते हैं वकदालिकल मुकातब, और इसी तरह मुकातब भी है वो भी अपने आका की इजाजत के बगैर आगे निकाह नहीं कर सकता। लिअन्न अल किताबत औजबत फकल हज्र फी हक्किल कस्बी, भाई देखिए ये जो गुलाम होता है इस पर पाबंदियां होती हैं, ये कोई तसर्रुफ भी नहीं कर सकता, ये गुलाम पर पाबंदियां होती हैं ये कोई तसर्रुफ नहीं कर सकता। अब जब इसने आका से अक़्दे किताबत कर लिया तो कमाई के मामले में इस पर से पाबंदी खत्म हो गई, ये हम जाकर तिजारत कर सकता है, माल कमा सकता है, तो कमाई के मामले में इस पर से पाबंदी खत्म हुई है, बाकी मामलात में अभी भी ये गुलाम है इस पर पाबंदियां बरकरार हैं और उन्हीं पाबंदियों में से एक निकाह की पाबंदी भी थी वो भी अभी तक बरकरार है, तो ये आगे निकाह नहीं कर सकता। कहते हैं लिअन्न अल किताबत औजबत फकल हज्र फी हक्किल कस्बी, औजबत भाई औजब यूजिबू का यहां माना करेंगे असबतत यानी साबित करना, साबित किया। फकल हजरी, फक उनका माना है छुड़ाना, अल हजर, हजर कहते हैं पाबंदी को, फी हक्किल कस्ब, कस्ब का माना है कमाई। लिअन्न अल किताबत औजबत, इसलिए क्योंकि कि अक़्दे किताबत ने साबित कर दिया फकल हजरी, पाबंदियों से छुड़ाना, पाबंदियों का खत्म करना, फी हक्किल कस्बी, कमाई के हक में, यानी ये अक़्दे किताबत ने सिर्फ कमाई के हक में पाबंदी खत्म की है और चीजों के हक में पाबंदी खत्म नहीं, निकाह के सिलसिले में अभी भी पाबंदी बरकरार है, ये आका की इजाजत के बगैर आगे निकाह नहीं कर सकता। कहते हैं लिअन्न अल किताबत औजबत फक्कल हजरी, इसलिए क्योंकि किताबत ने पाबंदी खत्म करने को साबित किया है फी हक्किल कस्बी, कमाई के हक में, फबकिया फी हक्किन निकाह अला हुक्म रिक, तो ये गुलाम बाकी रहेगा निकाह के हक में, अला हुक्म रिक, गुलामी के हुक्म पर, निकाह के सिलसिले में ये उसी तरह गुलामी के हुक्म पर है और गुलाम तो अपनी मर्जी से निकाह नहीं कर सकता, तो ये भी नहीं कर सकता। वलिहादा ला यमलिकुल मुकातब तजवीजा अब्दिही, और इसीलिए मुकातब मालिक नहीं है कि वो निकाह करवाए अपने गुलाम का। भाई देखिए मुकातब जाएगा अब पैसे कमाकर लाएगा और अपने आप को आजाद करवाएगा, और इस मुकातब ने तिजारत शुरू की, कुछ माल वगैरह बढ़ता चला गया, इसने गुलामों और बांदियों की तिजारत शुरू कर दी, तो अब याद रखो ये मुकातब अपने किसी गुलाम का निकाह नहीं करवा सकता, इसको वो काम करने की तो इजाजत है जिनसे कमाई हो, जिनसे पैसा हासिल हो, यानी ये अपनी बांदी का निकाह करवा सकता है, क्योंकि बांदी का निकाह करवाएगा तो महर हासिल होगा खावंद से। या इसी तरह बांदी की आगे औलाद जो आएगी, बांदी के बच्चे जो हैं वो भी गुलाम और बांदियां शुमार होंगे इस मुकातब के। मैंने आपको बतलाया था कि औलाद आजादी और गुलामी में मां के ताबिया होती है। मां अगर आजाद औरत है तो औलाद भी आजाद होगी, और अगर मां बांदी है तो औलाद भी गुलाम और बांदियां होंगे। खावंद बेशक आजाद ही क्यों ना हो, लेकिन मां अगर बांदी है तो उसकी औलाद भी गुलाम और बांदियां होंगे। तो मुकातब अपनी बांदी का निकाह तो करवा सकता है, क्योंकि यह भी कमाई की सूरत है, क्योंकि बांदी का महर मिलेगा, या नीज जो बांदी से औलाद हासिल होगी वो भी गुलाम और बांदियां होंगे भाई। तो मुकातब अपनी बांदी का निकाह करवा सकता है, लेकिन मुकातब अपने गुलाम का निकाह नहीं करवा सकता, क्योंकि गुलाम का निकाह करवाएगा ये तो गुलाम के अंदर निकाह ऐब शुमार होता है, इससे तो फायदे के बजाय नुकसान होगा भाई, तो मुकातब को इसकी इजाजत नहीं होगी भाई। तो कहते हैं वली हादा ला यमलिकुल मुकातब, और इसीलिए मुकातब इस बात का मालिक नहीं है तजवीजा अब्दी ही कि वो निकाह करवाए अपने गुलाम का, वयम लिकु तजवीजा अमती ही, और वो मालिक है इस बात का कि अपनी बांदी का निकाह करवाए, लिया नहुम मिम्बाबी लिखते साबी, इसलिए क्योंकि बांदी का निकाह करवाना ये कमाई के बाब से है कि इससे महर भी मिलेगा और औलाद भी। वकदल मुकातबतुल्ला तमलिकु तजवीजा नफसीहा, और इसी तरह मुकातबा जो है वो मालिक नहीं है कि अपनी जात का निकाह करवाए। मुकातबा किसी से निकाह करना चाहती है? नहीं भाई, मुकातबा के मनाफिया का मालिक तो आका है भाई। मुकातबा के मनाफिया बुजा का मालिक कौन है? आका है। तो किसी और की मिल्कियत में इसको तसरुफ करने का हक नहीं है, किसी और से निकाह करके उसको अपने मुनाफिया का मालिक नहीं बना सकती भाई। तो कहते हैं वकदल मुकातबतु ला तमलिकु तजवीजा नफसीहा बिदूनी इज्निल मौला, और इसी तरह मुकातबा वो मालिक नहीं है कि अपनी जात का निकाह करवाए अपने आका की इजाजत के बगैर। वह तमलिकु तजवीजा अमतीहा, हां ये मुकातबा मालिका है कि ये अपनी बांदी का निकाह करवाए, लिमा बैयन्ना, उस वजह से जो हमने बयान कर दिया कि ये मुकातबा भी अपनी बांदी का निकाह करेगी तो कमाई होगी, महर मिलेगा, और बच्चे हुए तो वो भी गुलाम और बांदियां होंगे। वह कदल मुदब्बर व उम्मुल वलदी, और इसी तरह मुदब्बर और उम्मुल वलद भी हैं, यानी मुदब्बर भी आका की इजाजत के बगैर निकाह नहीं कर सकता, उम्मे वलद भी आका की इजाजत के बगैर निकाह नहीं कर सकती। लिअन्न अल-मिल्क फीहिमा क़ाइमुन, इसलिए क्योंकि इन दोनों के अंदर मिल्कियत कायम है। ये दोनों क्या है? अभी तक ममलूक है आका के, लिहाजा ये उस आका की इजाजत के बगैर आगे निकाह नहीं कर सकते। वह इदा तजव्वजल अब्दु बिइज़्नि मौलाहु फल महरुदैन फी रक़बतिहि युबाउ फी। सूरत मसला ये, एक गुलाम ने अपने आका की इजाजत से निकाह कर लिया तो अब इस गुलाम पर महर आएगा, बीवी का महर देना पड़ेगा। आजाद औरत हुई तो उसका महर जरा ज्यादा होगा, और अगर बांदी से निकाह किया है तो उसका महर जरा कम होगा, लेकिन गुलाम को महर देना पड़ेगा। अब जब गुलाम पर देन आया है तो आका पर लाजिम है, क्योंकि आका की इजाजत से उसने निकाह किया था, तो आका को अब ये देन यानी ये महर अदा करना पड़ेगा। अगर आका अदा नहीं करता तो फिर इस गुलाम को बेचा जाएगा और उसको बेचकर यह महर अदा किया जाएगा, और आका जो है मान्य नहीं बन सकता, इसलिए क्योंकि आका की इजाजत से उसने निकाह किया है, आका की इजाजत से उसके ऊपर यह देन आया है भाई। तो कहते हैं वह इदा तजव वजल अब्दु बिइज़्नि मौलाहु, और जब किसी गुलाम ने निकाह कर लिया अपने आका की इजाजत से, फल महरुदैन फी रकबतिही, तो ये जो महर है ये देन है इसकी गर्दन में, यानी ये गुलाम के ऊपर देन है, युबाउ फीही, इस देन में इस गुलाम को बेचा जाएगा। लिअन्न हादा दैन वजब फी रकबतिल अब्द, इसलिए क्योंकि ये ऐसा दैन है जो वाजिब हुआ है गुलाम की जात में, लिवजूदि सबब ही मिन अहलिही, इसलिए क्योंकि इस दैन का सबब पाया गया है मिन अहलिही इसके अहल से, लिवजूदि सबब ही, इसलिए क्योंकि इस दैन का जो सबब है यानी निकाह वो पाया गया है, मिन अहलिही उस शख्स से जो अहले निकाह है यानी आकिल और बालिग है, आकिल और बालिग है भाई। देखो निकाह जो है, निकाह के अंदर तो माल जरूर आता है, माल के बगैर तो निकाह नहीं हो सकता, तो इसने भी निकाह किया है, ये आकिल बालिग है, तो आकिल बालिग ने निकाह किया है, दैन का सबब पाया गया तो इसके ऊपर दैन आ गया। बात समझ में आ गई। लि वजूद इस सबब ही मिन अहली ही, इसलिए क्योंकि इस दैन का सबब यानी निकाह पाया गया है मिन अहली ही, ये सबब किसकी तरफ से पाया गया, मिन अहली ही, जो इसका अहल भी है यानी आकिल बालिग है। वक़द ज़हरा फी हक़िल मौला, और तहकीक ये जो दैन है ये आका के हक में भी जाहिर है। लिसुदूरिल इज़्न मिन जिहती ही, इसलिए क्योंकि इजाजत पेश आई थी मिन जिहती ही आका की तरफ से, इजाजत तो आका की तरफ से आई थी तो ये आका के हक में भी जाहिर है, आका के हक में जाहिर है, लिहाजा आका को ये दैन अदा करना पड़ेगा, उसकी इजाजत से ये दैन गुलाम पर आया है, और अगर आका अदा नहीं करता तो फिर इसी गुलाम को बेचा जाएगा और जो पैसे वसूल होंगे उसके जरिए यह महर अदा किया जाएगा, और अगर पैसे बाकी बच गए तो वह आका के हवाले कर दिए जाएंगे। तो देखा, गुलाम पर आने वाला दैन आका के हक में जाहिर हो, इसका मतलब यह है कि यानी आका की इजाजत से यह दैन आया है, आका सबब बना है इस दैन के आने का, लिहाजा इस सूरत में फिर यह दैन आका को अदा करना होता है। अगर आका अदा नहीं करेगा तो आका ही के इस गुलाम को बेचा जाएगा। देखो यह गुलाम भी तो आका ही का माल है भाई, लिहाजा इस गुलाम को बेचा जाएगा और उसके जरिए अदायगी की जाएगी। अगर सारा दैन अदा हो सका तो सारा अदा किया जाएगा, और अगर सारा अदा ना हो सका तो जिस कदर अदा हो सका वो दैन अदा कर दिया जाएगा, और अगर अदायगी के बाद कुछ माल बच जाए तो फिर वो आका के हवाले किया जाएगा। तो बात समझ में आ गई, आका के हक में दैन के जाहिर होने का क्या माना है कि आका के माल में से इसकी अदायगी की जाएगी, वो खुद अदा कर दे या फिर इसके इस गुलाम को बेचकर उसको अदा किया जाएगा भाई। तो आका के हक में दैन के जाहिर होने का माना समझ में आ गया भाई। और अगर दैन आका के हक में जाहिर ना हो, मसलन एक गुलाम जो है उसने आका की इजाजत के बगैर निकाह कर लिया, और आप जानते हैं कि आका की इजाजत के बगैर गुलाम निकाह कर ले तो वो आका की इजाजत पर मौकूफ होता है, आका इजाजत देगा तो वो निकाह नाफिज होगा और आका इजाजत नहीं देगा तो वो निकाह भी नाफिज नहीं होगा। तो गुलाम ने निकाह कर लिया है तो सिर्फ इस निकाह की वजह से गुलाम पर अभी महर वाजिब नहीं हुआ, क्योंकि ये निकाह अभी नाफिज ही नहीं हुआ। लेकिन इस गुलाम ने निकाह भी कर लिया और बीवी से सोहबत भी कर ली भाई, अब तो महर पक्का हो गया, अब तो गुलाम पर महर आया, लेकिन ये निकाह तो उसने आका की इजाजत से नहीं किया था, लिहाजा ये दैन आका के हक में जाहिर नहीं, लिहाजा ये ना आका से वसूल किया जाएगा ना आका के माल यानी इस गुलाम को बेचकर वसूल किया जा सकता है। ये आका से भी नहीं वसूल हो सकता और इस गुलाम को भी नहीं बेचा जा सकता, क्योंकि ये गुलाम तो आका का है भाई, इस सूरत में तो आका का नुकसान होगा, तो ये दैन आका के हक में जाहिर नहीं है, तो इस सूरत में फिर इस गुलाम को नहीं बेचा जाएगा। हां, इस गुलाम के जिम्मे ये दैन है और जब गुलाम आजाद हो जाएगा तो फिर उसके बाद इस गुलाम से इस दैन का मुतालबा किया जाएगा, इस महर का, ये जो इसने आका की इजाजत के बगैर निकाह किया था और सोहबत की थी, तो अब इस गुलाम से इसकी आजादी के बाद फिर इस दैन का मुतालबा किया जाएगा। और पता नहीं ये गुलाम जिंदगी भर आजाद भी होता है या नहीं, लेकिन बहरहाल इस वक्त इस दैन की वसूली की कोई सूरत नहीं है, यह गुलाम की आजादी के बाद ही वसूल हो सकता है अगर गुलाम कभी आजाद हो गया। बात समझ में आ गई। फयतअल्लक़ु बिरक़बतिही, लिहाजा इस दैन का ताल्लुक गुलाम की जात के साथ होगा। दफ़अन लिल मज़र्रति अन अस्हाबि दुयूनी, नुकसान को दूर करने के लिए कर्ज खाहों से। कमा फी दैन तिजारती, जैसे कि दैन तिजारत में होता है भाई। सूरत है मसला ये, एक शख्स ने अपने गुलाम को इजाजत दे दी कि तुम तिजारत कर सकते हो, तो इसको कहते हैं अब्दे माजून लहू, आबदे माजून लहू, यानी वो गुलाम जिसको इजाजत दी गई है, यानी जिसको तिजारत की इजाजत दी गई है। तो गुलाम को आका ने इजाजत दे दी, गुलाम जरा होशियार था, आका ने उसको तिजारत की इजाजत दे दी कि ये माल कमा कर लाएगा। उस गुलाम ने तिजारत शुरू की, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ उसको पे दर पे नुकसानात होते चले गए और उस पर काफी कर्जे चढ़ गए। गुलाम के ऊपर काफी कर्जे चढ़ गए। अब इसके अंदर देखो ये तिजारत गुलाम ने आका की इजाजत से शुरू की थी, लिहाजा ये कर्जे अब आका के जिम्मे है कि ये कर्जे अदा करे। अगर आका कर्जे अदा नहीं करता तो फिर इस सूरत में इस गुलाम को बेचना पड़ेगा भाई, क्योंकि आका की इजाजत से उसने ये काम शुरू किया था, तो ये कर्जे आका के हक में भी जाहिर हैं। तो गुलाम को बेचा जाएगा और फिर वो कर्जे जितने हो सके अदा किए जाएंगे। तो कहते हैं कि कर्जा जो है गुलाम की जात से मुताल्लिक होगा, दफअन लिल मज़र्रति अन असहाबी दुयूनी, वो जो कर्ज खा है उनसे नुकसान को दूर करने के लिए। वरना तो अगर आका भी अदा नहीं करता, गुलाम को भी नहीं बेचा जाता, तो कर्ज खाहों का तो नुकसान हो रहा है, तो उनसे नुकसान को दूर करने के लिए गुलाम को बेचा जाएगा भाई। तो कहते हैं दफअन लिल मज़र्रति अन असहाबी दुयूनी, नुकसान को दूर करने के लिए कर्ज खाहों से, कमा फी दैनी तिजारती, जैसे कि दैनी तिजारत में होता है, दैनी तिजारत के अंदर भी गुलाम पर अगर कर्जे आ जाएं तो उनको गुलाम को बेचना पड़ता है, इल्ला ये कि आका खुद सारे कर्जे अदा कर दे। वल मुदब्बर वल मुकातबु यसायानि फिल महरी, और मुदब्बर और मुकातब जो है वो साई करेंगे, कोशिश करेंगे फिल महरी महर में। भाई इन्होंने बताया आम गुलाम है, उसके ऊपर महर आ गया तो उसको बेचा जाएगा, लेकिन अगर वो गुलाम मुकातब या मुदब्बर है, मुकातब जिसे आका ने अकदे किताबत किया है, और मुदब्बर वो गुलाम जिसे आका ने कहा है मेरे मरने के बाद तू आजाद है, तो अगर इन दो गुलामों में से कोई निकाह करता है, अब उसके ऊपर भी महर आ गया, इनके ऊपर भी महर आ गया, तो क्या इनको भी बेचा जाएगा? कहते हैं नहीं भाई, मुकातब और मुदब्बर को बेचना जायज नहीं है। जब बेचना जायज नहीं है तो फिर ये खुद कोई काम वगैरह करेंगे, पैसे कमाएंगे और वो महर अदा करेंगे भाई। तो कहते हैं वल मुदब्बर वल मुकातब यसायानि फिल महरी, और मुदब्बर और मुकातब जो है वो सई करेंगे यानी कोशिश करेंगे फिल महरी महर में, वला युबाअनि फीही, और इनको इस देन में बेचा नहीं जाएगा, इस महर के सिलसिले में इनको नहीं बेचा जाएगा, लिअन्नहुमा ला यहतमिलानि नक़ला, इसलिए क्योंकि ये दोनों इहतमाल नहीं रखते। किस चीज का? अन्नकल मिन मिल्किन इला मिल्किन, कि इनको मुंतकिल किया जाए एक मिल्कियत से दूसरी मिल्कियत की तरफ, मा बका इल किताबती व तदबीरी, किताबत और तदबीर के बाकी होते हुए। किताबत बाकी है यानी मुकातब भी है और एक मिल्कियत से दूसरी मिल्कियत की तरफ मुंतकिल हो जाए, इनमें ऐसा जायज नहीं। इसी तरह मुदब्बर जो है कि मुदब्बर भी हो और एक मिल्कियत से दूसरी मिल्कियत की तरफ मुंतकिल भी कर दिया जाए, ये जायज नहीं है भाई। ये माना है, फिर तर्जमा देख लीजिए, लिअन्नहुमा ला यहतमिलानि नक़्ल मिन मिल्किन इला मिल्किन, इसलिए क्योंकि ये दोनों इहतमाल नहीं रखते कि इनको मुंतकिल किया जाए एक शख्स की मिल्कियत से दूसरे शख्स की मिल्कियत की तरफ, मा बका इल किताबति व तदबीरी, किताबत और तदबीर को बाकी रखते हुए, फयुअद्दा मिन कस्बिहिमा, लिहाजा ये महर अदा किया जाएगा इन दोनों की कमाई में से, ला मिन नफ्सिहिमा, इनकी जात में से नहीं, इन इनको बेचकर नहीं अदा किया जाएगा क्योंकि बेचना जायज नहीं, हां इनकी कमाई से अदा किया जाएगा। वह इदा तजव वजल अब्दू बिगैरी इज्न मौलाहू, और जब गुलाम ने निकाह कर लिया अपने आका की इजाजत के बगैर, फकाल अल मौला तल्लिक हा औ फारिक हा, तो आका ने गुलाम से कहा तल्लिक हा, इस औरत को तलाक दे दे, औ फारिक हा, या इस औरत से जुदाई इख्तियार कर ले, फलैसा हाजा भी इजाजत, तो ये इजाजत नहीं है। सूरत मसला ये, गुलाम ने आका की इजाजत के बगैर निकाह कर लिया और आका को आकर बतलाया या आका को पता चला तो आका ने कहा तल्लिखा, इस औरत को तलाक दे दे, या फारिखा, इस औरत से जुदाई इख्तियार कर ले, तो किस क्या इसको इजाजत शुमार करेंगे? भाई देखिए ना, इसमें इजाजत का भी एहतमाल है और रद्द का भी एहतमाल है। या तो आका के कहने का मतलब यह है कि मैं इस निकाह को रद्द करता हूं, मैं क्या करता हूं, इस निकाह को रद्द करता हूं, इसकी इजाजत ही नहीं देता मैं। और दूसरा इहतमाल यह भी है कि आका कह रहा है तलाक दे दे, और तलाक तो निकाह के बाद आया करती है, मालूम हुआ वो निकाह की इजाजत दे रहा है कि निकाह तो कर लिया ठीक है लेकिन अब क्या करो, तलाक दे दो, तो क्या इसको इजाजत शुमार करेंगे या इसको रद्द शुमार करेंगे कि आका ने निकाह को रद्द कर दिया। और आपने पढ़ा है आका जब निकाह को रद्द करेगा तो वो निकाह बातिल हुआ, जो गुलाम ने किया था वो बातिल हो गया, क्योंकि आका की इजाजत पर मौकूफ था ना। तो मालूम हुआ गुलाम ने खुद निकाह किया और आकर आका को बतलाया, आका ने क्या कहा, तल्लिखा और फारिखा, तो इसको किस पर महमूल करेंगे, रद पर महमूल करेंगे, इजाजत पर महमूल नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई। कहते हैं वह इदा तज़व्वज अल-अब्दु बिगैर इज़्नी मौलाहु, जब किसी गुलाम ने निकाह कर लिया अपने आका की इजाजत के बगैर, फकाल अल मौला, तो उसके आका ने उससे कहा, तल्लिकहा, इस औरत को तलाक दे दे, औ फारिकहा, या इसे जुदा हो जा, फलैसा हाज़ा भी इजाज़तिन, तो ये इजाजत नहीं है, लिअन्नहु यहतमिलु रद्द, क्योंकि इसके अंदर रद्द का भी इहतमाल है कि आका इजाजत नहीं दे रहा बल्कि निकाह को रद्द कर रहा है। इजाजत का भी इहतमाल, रद्द का भी, दोनों इहतमाल है, लेकिन हमने रद्द पर महमूल किया। भाई जी। भाई क्यों, जब इहतमाल दोनों है तो रद्द पर क्यों महमूल किया। तल्लिखा का माना यह भी तो हो सकता था कि निकाह हो गया है ठीक है लेकिन अब क्या करो, तलाक दे दो। या फारिखा का यह माना भी तो कर सकते थे कि हां ठीक है निकाह तो तुमने कर लिया लेकिन अब इस औरत से जुदा हो जाओ, तो इजाजत पर भी तो महमूल कर सकते थे। कहते हां इहतमाल दोनों हैं लेकिन यह मसला है नाफरमान गुलाम का, उसने आका की इजाजत के बगैर निकाह किया है, लिहाजा एक नाफरमान गुलाम की हालत के लायक यही है कि इसको रद्द पर महमूल किया जाए, इजाजत पर महमूल न किया जाए। भाई देखो ना, अगर आका रद्द कर देगा, आका रद्द कर देगा तो वो निकाह हुआ ही नहीं, वो औरत इसकी बीवी ही नहीं, क्योंकि आका ने निकाह ही रद्द कर दिया। और अगर आप इसको इजाजत पर महमूल करेंगे, कोया आका ने यह कहा ठीक है निकाह तो कर लिया लेकिन अब इसको तलाक दे दे, तो गुलाम अगर तलाक नहीं देता बीवी तो उसके लिए हलाल है जब तक, भाई तवज्जो है। तो इसमें दोनों एहतमाल हैं, रद्द का भी और इजाजत का भी, लेकिन यह एक नाफरमान गुलाम का मामला है और नाफरमान गुलाम के लायक ज्यादा यही है कि इसको इजाजत पर महमूल न किया जाए, अगरचे इजाजत का भी इहतमाल है बल्कि इसको रद्द पर महमूल किया जाए। और नीज इसलिए क्योंकि रद्द आसान है, और अगर आप इसको इजाजत और फिर तलाक पर महमूल करते हैं तो वो आसान नहीं। वजह यह देखो, अगर हम इसको रद्द पर महमूल करेंगे कि आका ने निकाह को ही रद्द कर दिया, मालूम हुआ निकाह सिरे से आया ही नहीं यहां पर, वो जो मौकूफ निकाह मुनाकिद हुआ था वो नाफिज ही नहीं हुआ, बातिल हो गया, तवज्जो है। तो रद्द की सूरत में एक चीज सिर्फ दफा करना लाजिम आ रहा है, एक निकाह आ रहा है, आका उसको क्या कर रहा है, दफा कर रहा है। और अगर आप इसको इजाजत पर महमूल करें तो फिर इस सूरत के अंदर एक चीज को पहले साबित मानना पड़ेगा और फिर उसके बाद आका उससे जुदाई का हुक्म दे रहा है। तो यूं कहो कि रद्द की सूरत में सिर्फ दफाए निकाह है, निकाह को आने ही नहीं दिया, दफा कर दिया आका ने, दूर कर दिया। और इजाजत पर महमूल करें तो फिर यहां रफाए निकाह पर महमूल करना पड़ेगा कि पहले निकाह मानो फिर तलाक वगैरह के जरिए उसको उठा दो, खत्म कर दो, तो गोया दो चीजें आ जाएंगी। तो रफा के बजाय दफा पर महमूल करना ज्यादा आसान है, क्योंकि दफा में सिर्फ दूर करना है और रफा के अंदर पहले बाकायदा निकाह को मानना और फिर उसके रफा का हुक्म देना है, दो चीजें आ रही हैं। तो कहते हैं फलैसा हाजा भी इजाजतिन, तो आका का तल्लिक हा या फारिक हा कहना इजाजत नहीं है, लिअन्नहु यहतमिलु रद्द, क्योंकि आका का यह कौल जो है रद्द का एहतमाल रखता है, लिअन्न रद्द हादल अक्द व मुतारकतहु युसम्मा तलाकन व मुफारकतन, इसलिए क्योंकि इस अक्द को रद्द करना व मुतारकतहु और इसको छोड़ देना, मुतारकत कहते हैं बाहम एक दूसरे को छोड़ देना, वह मुतारकता हो और इसको छोड़ देना, युसम्मा तलाक व मुफारकतन, इसको भी तलाक और मुफारकत कहते हैं। आका ने बेशक तलाक का लफ्ज इस्तेमाल किया है लेकिन इस किस्म के निकाह के रद्द को भी क्या कह दिया जाता है, तलाक कह दिया जाता है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं लिअन्ना रद्द हादल अक्दी व मुतारकतहु, इसलिए क्योंकि इस अकद को रद्द करना और इसको छोड़ना, युसम्मा तलाकं व मुफारकतन, इसको भी तलाक और मुफारकत कह देते हैं। वह हुआ अलयकु बिहालिल अब्दिल मुतमर्रिदी, मुतमर्रिद कहते हैं नाफरमान और सरकश भाई, अब्द मुतमर्रिद नाफरमान गुलाम। वह हुआ अलयकु बिहालिल अब्दिल मुतमर्रिदी, और ये ज्यादा मुनासिब है नाफरमान गुलाम की हालत के कि इसको इजाजत पर महमूल न किया जाए बल्कि रद पर महमूल किया जाए। अव हुआ अदना, या ये अदना है तल्लिकहा और फारिकहा, एक सूरत यह है इसको रद पर महमूल करें यानी निकाह को आने ही नहीं दिया, उसको दफा कर दिया, और एक यह है कि इसको कि आका ने इजाजत दे दी निकाह की और उसके बाद छोड़ने का हुक्म दे रहा है, यानी इसको रफ़ए निकाह पर महमूल कर लिया जाए, और दफा आसान है किसके मुकाबले में, यूं कहो दफ़ए निकाह आसान है रफ़ए निकाह के मुकाबले में। दफा में सिर्फ एक चीज है और रफा के अंदर पहले निकाह को मानना पड़ेगा फिर उसका रफा होगा, तो वहां दो चीजें हैं। तो अदना क्या है दफा और आला क्या है रफा, तो इसको अदना पर महमूल किया जाएगा क्योंकि वो आसान है भाई। कहते हैं अव हुआ अदना, या इसलिए कि ये जो दफा है ये अदना है, ये रद जो है ये अदना है। फकान अलहमलु अलैहि औला, तो इस पर महमूल करना औला होगा बेहतर होगा। व इन काला तल्लिकहा तत्लीकतन, अच्छा इसके बजाय अगर आका ने यूं कहा, गुलाम ने आकर कहा जी मैंने तो निकाह कर लिया है, आका ने उससे कहा तल्लिकहा तत्लीकतन तमलिकुर रजअता, इसको ऐसी तलाक दो जिसमें तुम रुजू कर सको, तो यह फिर इजाजत है, ये तो इजाजत, क्योंकि आका उसको तलाक रजई देने का हुक्म दे रहा है और तलाक रजई तो निकाह के बाद आया करती है, मालूम हुआ आका निकाह की इजाजत दे रहा है। तो कहते हैं वह इन काला, और अगर आका ने कहा तल्लिकहा तत्लीकतन तमलिकुर रजअता, कि तू इसको ऐसी तलाक दे दे कि तू रुजू का मालिक हो, फहादा इजाजतुन, तो ये फिर आका की तरफ से इजाजत है। लिअन्न तलाक रजई ला यकूनु इल्ला फी निकाहिन सहीहिन, इसलिए क्योंकि तलाक रजई तो नहीं होती मगर सिर्फ निकाह सहीह में ही। फततअय्यनुल इजाजतु, तो इस सूरत में फिर इजाजत मुतअय्यन होगी। बात समझ में आ गई, चलिए बस भाई यहां तक बात समझ में आ गई, हल हो गया, चलिए बस भाई। हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।